माधव कुंज बिहारी आप बजाते रहो। मुझे आपको ये बताना है कि राधा माधव जो हम गाते हैं वो वार्म अप नहीं है, इट इज वार्म अप ऑल्सो बट इट इज नॉट वार्म अप ओनली। वो धाम में प्रवेश करने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, ये संक्षिप्त धाम का वर्णन है। ठाकुर भक्ति विनोद जी की कृपा से प्राप्त हुआ संक्षिप्त गोलोक धाम का वर्णन है ये। तो हम जब राधा माधव गाते हैं उसका पर्पज है कि हम अभी ठाकुर जी के धाम में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बोलो बोलो, इधर उधर मत देखो, हाँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे संप्रदाय में प्रभुपाद जी महाराज ने जो भी हमको दिया है छोटी छोटी चीज़ें, वो बहुत समर्पक है और उसमें बहुत गहरा अर्थ है। क्यों वो ऐसे है कि हमारे संप्रदाय में भागवत प्रवचन के पहले राधा माधव क्यों गाते हैं, इसके पीछे भी ये रहस्य है। इसलिए कभी भी ये मत समझना, अरे अभी तो राधा माधव चल रहा है बाद में जाएंगे, इसमें क्या थोड़ा देर से जाएंगे, कथा शुरू नहीं हुई है, ऐसा नहीं है। राधा माधव कथा के पहले हृदय से पुकार के भाव में गाना बहुत आवश्यक है। और हम लोग हमेशा कहते हैं यू कैन ऑलवेज डू बेटर, यू कैन ऑलवेज डू बेटर। हाँ, दोबारा अभी प्रेम से गाएंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, बोलो गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, हर एक शब्द जो है वो ब्रज का है। हर एक शब्द पर चिंतन करना आवश्यक है जब हम गाते हैं। कोई क्रियावाचक विशेषण है जैसे गिरिवर धारी, और कोई क्या भाववाचक। यशोदानंदन ये बताता है कि वो किसके पुत्र हैं, गिरिवर धारी क्रियावाचक, ब्रज जन रंजन ये भी क्रियावाचक, और जमुना तीर वनचारी यमुना के तीर पे विहार कर रहे हैं। ये चिंतन करते हुए इसे गाएंगे तो आप वहीं पहुंच जाएंगे। हरि बोल। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा
ram ram hare hare
pukaro pukaro
hare ram hare ram 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 hare hare
aur dhyan purvak
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
इसकी स्मृति होना जरूरी है कि ये हरे राधा रानी है, हरे राधे इसी भाव से पुकारो।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
पुकारो नील माधव पुकारो सब लोग पुकारो केवल पुकारो नहीं असहाय होकर पुकारो हृदय से पुकारो प्रेम से पुकारो
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
राधे और गहराई से पुकारो और हृदय से पुकारो और भाव से पुकारो
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
श्री राधे करुणामयी राधे कृपामयी राधे प्रेममयी राधे वात्सल्यमयी राधे दयामयी राधे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
पुकारो
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे
एवरीबॉडी पुकारो कृपा याचना करते हुए पुकारिए
करुणायाचना कृपायाचना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। राधे किशोरी दया करो। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे। जय गौरनिता जय गौरनिता गौरनिता जय गौरनिता। नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री बरसाना धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री गोवर्धन धाम की जय। जय जय श्री राधे। श्याम जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम श्री वृंदावन धाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका भाव है कि मैं मेरा जीवन आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगला श्लोक जो है उसमें हम नर नारायण ऋषि को ऋषियों को बद्रीनाथ में जो बैठे हैं उनको प्रणाम करते हैं। व्यास देव जी को प्रणाम करते हैं। ज्ञान की देवता सरस्वती देवी को प्रणाम करते हैं। हाँ एवरीथिंग इज मीनिंगफुल। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जय मुदीरये। जो ये शब्द है ना ततो जय जय इसको जय श्लोक भी कहते हैं क्योंकि श्रीमद् भागवत महाभारत रामायण इन ग्रंथों के कथा के आरंभ के पहले ये श्लोक कहना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे जीव को जय यानी यशस यश प्राप्त होता है। उसके जीवन में सफलता प्राप्त होती है और वो ऐसे शास्त्र हैं जिनको सुनने से जिनको पढ़ने से जिनको कथन करने से जय प्राप्त होता है। तो ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया భగవతీర్ ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. శ్రీమద్ భాగవత్ కథ సున్నే సే హృదయ మే భక్తి నైష్టికీ యని జిస్కో హమ్ హిలా నహీ సక్తే, నైష్టికీ యని అన్షేకేబుల్, ఉస్ ప్రకార్ సే భక్తి హృదయ మే స్థిత్ హో జాతీ హై. ఏసే భాగవత్ కే శ్లోక హై. నారాయణం నమస్కృత్య నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు, ఔర్ హృదయ మే జో భీ అభద్ర హై వో సబ్ సమాప్త్ హో జాతా హై. వో ముజే హమేషా యే శ్లోక జబ్ కహతా హూ నా తో ముజే వో గైనకాలజీ ఆబ్స్టెట్రిక్స్ కీ యాద్ ఆతీ. ఉస్సే కైసే హోతా హై, నైన్త్ మంత్ మే బాలక్ జో హై వో గోల్ గోల్ ఘూమ్తే రహతా హై, ఫిక్స్ నహీ హోతా హై. జబ్ వో ఫిక్స్ హో జాతా హై నీచే తో బాహర్ ఆనే కా రస్తా ఉస్కా శురూ హోతా హై. రస్తా మత్ యానీ క్రియా బాహర్ ఆనే కీ. తో హమారీ క్యా సమస్యా హై, హమ్ భీ వైసే హీ హై, అడ్లేలీ పైలట్ కరేన్ ముజే కళ్ళ థోడా కాయ. అడ్లేలీ ముజే డిలివరీ కా టైమ్ హో గయా లేకిన్ డిలివరీ నహీ హో రహీ హై. క్యూ? క్యూంకి బచ్చా అభీ గోల్ 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 హీ ఘూమ్ రహా హై. జబ్ ఉస్కా శీష్ ఉస్ మార్గ్ మే జాకే ఫిట్ హో జాతా హై తో ఫిర్ ఉస్కా ఆగే కా రస్తా శురూ హో జాతా హై, జర్నీ స్టార్ట్స్. तो वैसे ही हमारे हृदय में हमारा कैसा है ना, हम सब करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी जो है ना वो गोल गोल घूम रहे हैं, सब इधर भी देख रहे हैं, माया को इधर भी देख रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, लेकिन फिक्स नहीं होते हैं. वो फिक्स जब तक नहीं होते ना तब तक हमारा वास्तविक भक्ति का जीवन आरंभ नहीं होता है. तो श्रीमद् भागवत हमें वो फिक्सचर देता है, वो होता ना ग्लू एडेसिव, वो चाहिए ना हमको, उसके बिना हम लोग गोल गोल घूमते रहेंगे. तो वो श्रीमद् भागवत हमें फिक्स्चर दे देता है, स्थिरता, नैष्टिकी, भक्तिर भवति नैष्टिकी. इसलिए नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत श्रवण करना आवश्यक क्यों है? एक श्लोक क्यों ना हो, एक श्लोक में एक घंटे का विवरण क्यों ना हो, लेकिन नित्य भागवत का श्रवण करना बहुत आवश्यक है. ये भागवत हमारे लिए सर्वोच्च वरदान है. और भागवत की कथा, इसका अर्थ है ठाकुर जी की कथा. कुछ कथाएं ऐसी है जो हमारा जो भागवत ग्रंथ है उसमें भी नहीं है, लेकिन जहां जहां भागवत कथा है वो सब भागवत है. कुछ कथाएं पद्म पुराण में है, कुछ कथाएं महाभारत में है, कुछ कथाएं और किसी पुराण में है. तो जहां भागवत चर्चा है वो सब भागवत है. श्रीमद् भागवत का एक विस्तार पूर्वक व्याख्या है. एक तो वो 18,000 श्लोक है जो सुखदेव जी ने परीक्षित को कहे थे, लेकिन भागवत वहां तक सीमित नहीं है. शिव जी ने भी पार्वती को भागवत सुनाया है, व्यासदेव ने भी अपनी पत्नी को भागवत सुनाया है. एक और विशिष्ट भागवत है जो शांडिल्य मुनि ने बज्रनाभ को सुनाया है. बज्रनाभ वो कृष्ण के प्रपौत्र हैं जिनको परीक्षित महाराज के चक्रवर्ती सम्राट होने के समय उनको ब्रज का राजा बनाया था, जैसे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर एक स्टेट का, वैसे ब्रज भूमि का राजा बज्रनाभ को बनाया था. और बज्रनाभ ने ब्रज को बहुत संवारा है, वन, सर और विग्रह, इन तीन रूप में उनको भगवान ने आदेश दिया था कि इस तीन रूप में तीन प्रक्रिया से आप ब्रज को सवारो. तो वन यानी जहां पर हमने लीला की है, कृष्ण कहते हैं उनको, उनको सवारो, क्योंकि वन अभी भी ऐसे भी इसे नष्ट होते जा रहे हैं, उसमें बिल्डिंगें बन रही है, वन का जो लीला महात्म्य है वो सब नष्ट हो रहा है. तो उन्होंने कहा कि वन को सवारो. और सर, सर यानी सरोवर, जलाशय, कुछ जलाशय पहले से बने हुए हैं, कुछ बज्रनाभ ने बनाए, जैसे मोती कुंड में भगवान ने मोती बोए और मोती उत्पन्न किए, तो वहां पर सरोवर नहीं था तो उन्होंने बनाया. राधा रानी ने वही मोती लेकर रत्न डबारा गांव में मोती बोए और हीरे निकाले जमीन से, तो वहां पर उन्होंने कुंड बनाया, रत्न कुंड. ये दोनों कुंड उन्होंने बनाए, लेकिन राधा कुंड, श्याम कुंड, विमल कुंड भगवान ने प्रकट किए थे. तो मैंने बनाए हुए कुंड को रक्षा करना और नए कुंड बनाना और धाम की लीलाओं का जो जितनी सलियां हैं वो कुंडों के साथ उसका यूनियन कर देना और हमारे प्रमुख प्रमुख विग्रहों को स्थापन करना. कौन से विग्रह? राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद जी, राधा गोपीनाथ जी, बस इतने ही हैं? नहीं, बज्रनाभ ने बहुत सारे बनाए हैं. दाऊ जी जो है ना, दक्षिण कमल की पंकुड़ी, ब्रज के दक्षिण में सबसे, वहाँ पर दाऊ जी की 6 फुट 6 इंच की मूर्ति है. पेठा गांव में चतुर्भुज नारायण की मूर्ति है, जहाँ भगवान कृष्ण ने नारायण का रूप धारण किया था गोपियों को थोड़ा सा बहकाने के लिए, वही उन्होंने बनाई थी। रेवती बलराम जी की मूर्ति जो ऊंचे गांव में है, वो भी बज्रनाभ ने बनाई थी। संकर्षण कुंड में जो मूर्ति है गोवर्धन परिक्रमा में, वो 4.5 फुट की मूर्ति भी बज्रनाभ ने बनाई है। ऐसे वो गरुड़ गोविंद की मूर्ति छठिकरा में जो है, वो भी बज्रनाभ ने बनाई है। ऐसे प्राचीन प्राचीन जो लीला स्थलियाँ हैं, सारी प्राचीन काले पत्थर में बनाई हुई मूर्ति जो है अष्ट धातु की, वो सब बज्रनाभ ने बनवाई है। और इस प्रकार से बज्रनाभ ने ब्रज को, आज हमें जो ब्रज दिखाई पड़ता है उसमें उनका बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि पहले ब्रज के जो संवारने वाले हैं वो बज्रनाभ है। ब्रज भूमि जहाँ पर भगवान ने लीलाएँ की, अपनी दिव्य लीलाओं को संपन्न किया, प्रकट किया, गौलोक धाम को लीला के माध्यम से प्रकट किया, उसको सबसे पहले बज्रनाभ ने संवारा है। उसके बाद हमारे 6 गोस्वामी, उन्होंने दक्षिण ब्रज को संवारा, और नारद मुनि के अवतार नारायण भट्ट गोस्वामी, उन्होंने उत्तर ब्रज को संवारा। वो नारायण भट्ट गोस्वामी का ऊंचे गांव में जन्म हुआ था, तो ऊंचा गांव ये ब्रज के उत्तर दिशा में आता है, गोवर्धन के उस तरफ उत्तर दिशा में। तो बसाना, नंदगांव, काम्यवन और वहाँ की सारी जो स्थलियाँ हैं वो नारायण भट्ट गोस्वामी ने संवारा है। तो ऐसे भगवान की इच्छा से ब्रज भूमि प्रकट होती है, फिर अप्रकट होती है, फिर कोई संत को भगवान भेजते हैं फिर प्रकट करते हैं, फिर वो कुछ समय अप्रकट हो जाती है। जैसे ठाकुर भक्ति विनोद जब थे तो पूरा अंतरद्वीप नष्ट हो चुका था, लुप्त हो चुका था, फिर उन्होंने अपने प्रयास से उसको दोबारा प्रकट किया। अगर उन्होंने वो प्रयास रिसर्च नहीं किया होता तो हमारे लिए अंतरद्वीप था ही नहीं। इज नो अंतरद्वीप, इज नो बर्थ प्लेस ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो उनको रेसिडेंट साधु शांडिल्य मुनि नंदगांव बरसाने के, उन्होंने बज्रनाभ को भागवत सुनाया है, उसको विशेष रूप में ब्रज भागवत कहते हैं। कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो इस भागवत में नहीं है, उस भागवत में है, उसको कहते हैं ब्रजवासी पंच। यानी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो ब्रजवासी उसका परपोट देते हैं ना, तो वो उसी से देते हैं, बहुत सुंदर। जैसे मैं आपको एक सुना देता हूँ, ठीक है, ब्रजवासी पंच। जैसे भगवान ने गिरिराज को उठाया ना, तो आप सब जानते हैं भगवान ने गिरिराज को उठाया, लेकिन त्रेता युग में एक लीला हुई थी गोवर्धन के विषय में। वो ये है कि प्रभु रामचंद्र सेतु बांध रहे हैं और सभी पर्वतों की आवश्यकता है उसमें, और समय बहुत कम है, क्योंकि उसने कहा, सीता देवी ने एक टाइम बाउंड दिया है, टाइम लिमिट, कि 1 महीने के अंदर आप नहीं आते हो अभी तो मैं आपको जीवित नहीं मिलूंगी। तो ऐसा नहीं कि आपको आराम से ब्रिज बनाना है, बहुत बढ़िया डेकोरेशन करना है उसको, नहीं, जल्दी जल्दी बनाना है, बस चलने लायक बनाना है। तो हनुमान जी को ऐसा आज्ञा दिया था कि आप बड़े से बड़े चट्टान जितने हैं ना उतने लेके आओ, ताकि थोड़े थोड़े पत्थर में क्या होगा, टाइम लगेगा। तो हनुमान जी सब हिमालय से ही कन्याकुमारी सब जगह उड़ रहे हैं और बड़े बड़े पर्वतों को उठा उठा कर ले आ रहे हैं। तभी 7 कोस की जगह, अभी ये ब्रजवासी पंच शुरू होता है इसके, 7 कोस की जगह बाकी है उसमें सेतु में, हाँ, और गोवर्धन भी उस समय 7 कोस के थे। तो हनुमान जी देखा, अरे ये बहुत बढ़िया पर्वत है, एक ही पर्वत में आखिरी काम हो जाएगा, छोटे मोटे पर्वत की जरूरत क्या है। तो उन्होंने आए वो और उसको हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं पाए। हनुमान जी बहुत बलशाली हैं, महाबलशाली हनुमान, एक हाथ से देखा तो नहीं, दोनों हाथ से लगाए, फिर पूरा जोर लगा के, पूरा शक्ति लगा के, फिर भी टस से मस नहीं हुए गोवर्धन। देखो आप हनुमान जी के सामने गोवर्धन की क्या स्थिति है। तो फिर हनुमान जी ने दंडवत प्रणाम किया, तब उनको समझ में आया कि साधारण पर्वत नहीं है, दिव्य विभूति है। प्रणाम किया और पूछा, आपका परिचय क्या है? तो गोवर्धन ने कहा, आपने कुछ बिना बोले ही मुझे उठाने का प्रयास किया, पहले पूछते तो पहले बताता मैं, आप क्यों उठा रहे मुझे। तो उन्होंने संक्षेप में रामायण सुनाया उनको। तो वो गोवर्धन पर्वत जो है वो इतने भारी, जो हनुमान से भी टस से मस नहीं हुए, वो रुई की तरह हल्के हुए। और तुरंत हनुमान ने जब उनको उठाया, आकाश में चले गए, उस समय आकाशवाणी हुई कि बस अभी पर्वत मत लेके आओ, अभी फुल हो गया उधर, तो नीचे रख दिया उनको वापस एक बार, है ना। तो गोवर्धन जी इतना रोए, क्योंकि वो पता है कब आए ब्रज में, वो तो सत्ययुग में आए, वो पुलत्स्य मुनि ने उनको वहां पर आके ट्रांसफर किया था, वो आगे नहीं गए, उधर रुक गए, शाप प्राप्त किया। तो हृदय में कि मैं लेटेस्ट पढ़ा, हृदय में हनुमान जी ने प्रभु रामचंद्र से बात की, जैसे हम लोग मोबाइल से बात करते ना इंग्लैंड अमेरिका में, सीधे यहाँ से स्ट्रेट डायरेक्ट बात की कि मैंने आपके किसी भक्त को मैं मिला यहाँ पर, उसका रुदन उसका रोना देखकर मैं हैरान हो गया हूँ, ऐसी भक्ति ऐसा प्रेम आपके प्रति, कौन है ये? तो ये मेरा परम भक्त है, मेरी प्रतीक्षा में बैठा है कई युगों से। तो मुझे बहुत रो रहे हैं क्योंकि उनको सेवा भी प्रतीक्षा के बाद मिलने ही वाली थी लेकिन वो भी छिन गई, तो बहुत रो रहे हैं वो भी, रहे में रो रहे हैं। तो क्या बोलूँ उनको? प्रभु ने कहा कि टू ऑप्शंस है उनके लिए, अभी आओगे तो कहीं कहीं ना कहीं उनको मैं सेतु में फिट कर दूंगा और मेरे चरण स्पर्श प्राप्त होंगे और मैं लंका चला जाऊंगा, लेकिन वापसी में मेरा रिटर्न टिकट पुष्पक विमान में किया है मैंने, है ना, अभी मैं पैदल जा रहा हूँ, वापसी में पुष्पक विमान से जाऊँगा। तो कुछ समय के लिए चरण स्पर्श प्राप्त होगा और फिर नहीं होगा कुछ, ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर टू, रुकोगे, अगले अवतार में आऊंगा और आपके ही इर्द गिर्द आपके ही सानिध्य में मैं मेरी अंतरंग उत्कट लीलाओं को प्रस्तुत करूंगा। तो बहुत समय के लिए आपको कम से कम, अभी उस समय भगवान ने ब्रज में 11 में साल 52 दिन लीला की, ब्रज लीला, तो एक क्षण का चरण स्पर्श, 11 साल 52 दिन की सानिध्य और चरण स्पर्श, हस्त स्पर्श, निद्रा, गुफाओं में शयन, गुफाओं में एकांत, हर प्रकार की लीलाओं का दर्शन होगा, सानिध्य होगा, सेवा होगी। तो ऑप्शन नंबर टू आप चुनो। तो गोवर्धन ने विचार किया, ठीक है, ऑप्शन नंबर टू मैंने स्वीकार किया, प्रतीक्षा भले ठीक करनी पड़ेगी लेकिन ऑप्शन नंबर टू अच्छा है। तो फिर उन्होंने, हनुमान जी ने जब उनको ये मैसेज सुनाया तो हनुमान जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं दूसरा पर्याय चुनूंगा लेकिन दूसरा पर्याय के लिए मुझे बहुत और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये कैसे होता है ना, आपको कुछ चीज़ मिल नहीं रही है जो आपको चाहिए और आप ठीक है नहीं मिल रही है विरह में हो, लेकिन वो चीज़ दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है। जैसे नारद मुनि का कैसे, भगवान दिखाई दिए और अंदर धान हो गए, तो क्या हो गया, तड़प बड़ी तड़प। उससे क्या होता है ना, आपकी आपकी इष्ट वस्तु आपको मिली और अदृश्य हो गई तो आपकी तड़प पड़ जाती है। अभी सेवा मिली और सेवा छिन गई और अभी बताया गया कि आपको इतना इतना समय इंतजार प्रतीक्षा करनी होगी। तो उन्होंने हनुमान जी को कहा कि मैं तैयार तो हूं लेकिन मुझे बहुत कष्ट और पीड़ा होगी, मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है, तो आप यहां पर मेरा सहारा दो। तो हनुमान जी ने अपना एक रूप विस्तारित किया और वो वहां उनके सहारे के लिए बैठे। वो कौन है? पूछरे का लौटा बाबा, उसके रूप में हनुमान जी वहां बैठे। और उस समय से लेकर, सेतु बंद के समय से लेकर रामायण का अंत, द्वापर युग का शुरुआत, द्वापर युग का अंत, द्वापर युग के आखिरी 125 साल तब तक वो दोनों साथ में रहे, एक दूसरे को सांत्वना देते रहे। और उसके बाद प्रभु आए और प्रभु ने अपने 7 साल के बाद में, ऑफकोर्स संघ तो उनको पहले से दिया लेकिन 7 साल की उम्र में उन्होंने, ये ब्रजवासी पंच है, उनको अपने हाथ में धारण किया। 7 साल का, 7 कोस का गोवर्धन पर्वत, 7 कोस की गैप भरने में जिनको मौका नहीं मिला उनको भगवान ने 7 दिन 7 रात अपने शीश पे छत्र के रूप में धारण किया। तो ऐसी सब बातें ब्रज भागवत में बताई गई है, पंच ना? ये सब ब्रजवासी बताते हैं, ये सब कैसा है ना, एक एक भागवत शास्त्र जो है वो ब्रजवासियों के हृदय में होता है। एक हमारे सुखदेव जी ने कहा है, वो हमारे ग्रंथ में उपलब्ध है। और एक शास्त्र हमारे जो आचार्य हैं जैसे सुखदेव जी, रूप गोस्वामी, बिलो मंगल ठाकुर, हाँ, कृष्णदास कविराज, जयदेव गोस्वामी, फिर हमारे संप्रदाय के बाहर सूरदास जी और सारे संत जो हैं, उनके हृदय में भी भागवत होता है। कैसे? उनको साक्षात दर्शन होते हैं लीलाओं के, प्रत्यक्ष। अभी ब्रज में कौन सी लीला हो रही है तो वो जो परम सिद्ध भक्त हैं उनको दर्शन होते हैं और वो उन पर गीत लिखते हैं, उसको रसिया कहते हैं, वो भी भागवत है। अभी मान लीला जैसी लीलाओं का वर्णन भागवत में नहीं है क्योंकि तो मान लीला का वर्णन का क्या कहें, अगर राधा ये नाम भी अगर उच्चारण करते सुखदेव जी तो शरण मासिनी मूर्छा, 6 महीने मूर्छा उनको हो सकती थी। ये सुखदेव जी को पता था और सुखदेव जी के विषय में सबको पता था, परीक्षित महाराज को भी इसकी इस बारे में जानकारी थी। तो जब ये बात तय हुई कि अभी सुखदेव जी कथा करेंगे, आ गए, मैं भी आ गया, सब आ गए और संतों ने तय किया कि आप व्यासासन पर बैठेंगे और आप कथा करेंगे, हम सुनेंगे। पिताजी भी बैठे हैं, पिताजी के गुरुजी भी बैठे, नारद मुनि भी बैठे हुए हैं, पिताजी भी बैठे हैं जिनसे भागवत दो बार सुना, एक बार सीखा, वो भी बैठे हुए हैं। ऐसे बड़े बड़े बुजुर्ग संतों के बीच में तय हुआ कि ये बैठेंगे और कथा करेंगे। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया, बहुत सारे वाद्य लाए, वो गणपति में बजते ना, एक ताशा बजता है, एक ढोल बजता है, एक नगड़ा होता है, बहुत सारे अलग अलग भेरी दुंदुभी, ऐसे बहुत सारे वाद्य बजाए, वाद्य लेके आए और बजाने वालों को बिठाया। उन्होंने कहा जब मैं इशारा करूँगा ना तुरंत बजाना है। क्यों? क्योंकि कभी भी इन्होंने इनका ऐसी स्थिति है भक्ति की, कभी भी ये मूर्छित हो सकते हैं ठाकुर जी की लीला का वर्णन करते हुए, और कहीं भी गलती से भी राधा का उच्चारण उन्होंने किया तो वो बेहोश हो जाएंगे और 6-6 महीने तक इनकी मूर्छा होगी। हमारे पास तो 7 दिन का समय है, 1 हफ्ता, तो 6 महीने मतलब 6 जून 6 चौका 28 हफ्ते, 1 हफ्ता का समय में 28 हफ्ते अगर बेहोश हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। इसलिए उनको तैयार रखा था। और भागवत के कथा में सुखदेव जी मूर्छित हुए हैं, आपको पता है कब हुए? एनीबडी नोस? जब भी वो प्रश्न किया ना परीक्षित महाराज ने, अरे वो 1 साल के बाद में कैसे बताया अगस्त का वध हुआ? रोज बताते ना, वो भागवत कथा में आता है कि वो आज जो कथा हुई, आज जो लीला हुई, आज ही शाम को सारे ग्वाल बाल और कृष्ण बलराम अपनी मैया बाबा को बताते हैं क्या हुआ। वो उसके बिना वो एंट्री नहीं, घर पे होती उनकी, घर पे एंट्री नहीं है, वो चौखट पे ही सब कुछ बातें हो जाती है। फिर जो आदमी जाके उनको घर में जाकर ले जाके नहलाना धुलाना, मक्खन खिलाना और लोरी सुनाना, उसके बाद की बात। लेकिन इस दिन वो बता रहे हैं कि 1 साल के बाद, उन्हें अपने कथा में बताया 1 साल के बाद सब ग्वाल बालों ने मैया बाबा को बताया आपने कि आज ही अगासुर का वध हुआ। तो ये कैसे हुआ? इसमें बहुत सारी बातें हमको सीखने मिलती है। कृष्ण की लीला कब आरंभ हुई? 3.5 दिन के बाद दशम स्कंद आरंभ हुआ, उसके बाद भी ये वत्सपाल लीला चल रही है। वत्सपाल लीला का आखिरी समय है ये, यानी भगवान के जन्म के 5 साल भी पूरे हो चुके हैं। 5 years to 6 years इज द टाइम फॉर ब्रह्म समोहन लीला। 1 साल में ब्रह्म समोहन लीला का कालावधि था। 5वें बलराम जी के जन्मदिन पर अगासुर की लीला हुई, उसके बाद में 6वें बलराम जी की लीला बर्थडे के दिन ये समाप्त हुई, जिस दिन ग्वाल वालों ने उनको बताया कि अगासुर का वध आज ही हुआ। एक गांव है वहां पर, इसका नाम है आजही। क्यों? उधर एक उन्होंने बताया आज ही हुआ, तो उस गांव का नाम पड़ा आजही। और वहां पर हमारा भक्तिवेदांत गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल है, BGIS, उसी गांव में है जहां पर ये बताया गया आज ही हुआ। तो ये जब प्रश्न किया तो उस प्रश्न का उत्तर का चिंतन करके सुखदेव जी मूर्छित हो गए। ऐसे तुरंत उन्होंने इशारा किया बजाओ, तो उन्होंने बजाना शुरू किया, तो फिर वापस आ गए होश में। इतनी ब्रह्म समूह लीला जो है ये बहुत ही शक्तिशाली है। केवल उसका चिंतन मात्र से सुखदेव जी को मूर्छा आई, तो राधा रानी के नाम के अलावा भी उनको मूर्छा आई। फिर भी उनको रहा नहीं गया, इसलिए उन्होंने राधा रानी का दशम स्कंद में कम से कम 5 बार अप्रत्यक्ष उल्लेख किया है। वधु 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 के नाम से, वधवे वधवा वधु, ऐसे 3 बार रासलीला के प्रसंग में उनका वर्णन आता है। और अनया राधिता नूनम, ये श्लोक में भी उनका उल्लेख आया है। क्योंकि पूरा भागवत जो है ना ये राधा रानी का ही कथा है। कैसे? भागवत में क्या वर्णन दिया है बताइए। दशम भगवत गीता समाप्त होती है शरणागति के स्थिति पर। भगवत गीता का एंड क्या है? सर्वधर्मम परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। और उसके आगे एक एंड है, ये तो बताया उन्होंने, उसके आगे एंड क्या है? नष्ट मोहो स्मृतिर लब्ध्वा। एंड में क्या बताया? करिष्ये वचनम तव। यहां से ये एंड है भगवद्गीता का, इसकी परिणति है ये, इसका कंक्लूजन है कि भगवद्गीता सुनने से अर्जुन ने कहा अभी मेरा मोह नष्ट हो गया है, अभी मैं केवल आप जो कहेंगे वही करूंगा, और वो उन्होंने किया। और आगे महाभारत युद्ध में बहस हुई उनके कई जगह पर, लेकिन किया वही जो कृष्ण ने कहा। वहां से भागवत शुरू होता है, शरणागति से भागवत आरंभ होता है, और जिन जिन जो जो शरणागत भक्त हैं उनका सारा लीला जो है भागवत में है, और भागवत की परिणति प्रेम में होती है। पूरा भागवत जो है वो प्रेम का शास्त्र है। वो आप सबको भागवत अगर आप ध्यान से, हृदय से, भक्ति भाव से पढ़ेंगे तो आपको प्रेम तक पहुंचा देगा वो। अभी प्रेम किसका साम्राज्य है बताइए? राधा रानी का साम्राज्य है। प्रेम की प्रक्रिया किसकी 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 अथॉरिटी है उसमें? राधा रानी की है। प्रेम भक्ति का मूल कौन है? राधा रानी है। तो पूरे भागवत में जो भी वर्णन किया है वो राधा रानी का ही वर्णन है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में कह नहीं सके क्योंकि उनके मन में भक्ति से अधिक करुणा ज्यादा थी। सच्चे भक्त का लक्षण क्या है? भक्ति। और भक्ति में उनको बहुत सारे अनुभव होते हैं, कोई रोमांच होते हैं, कभी अश्रु आते हैं, रोमांच कपा अश्रुतरंग भाजो। लेकिन जब भक्त और प्रगति करता है तो वो अपने भक्तिमय अनुभवों को भी त्याग देता है और करुणा को प्राधान्य देता है। एक तरफ ऐसा मोह है कि मैं राधा राधा कहते जाऊं और चेचे मैना मूर्छित होते जाऊं, फिर जग जाऊं, फिर वापस राधा रानी के बारे में कहूं, फिर मूर्छित हो जाऊं। ये एक आनंद की अनुभूति है ना, सभी आचार्यों की अनुभूति हुई है, रूप गोस्वामी को हुई है, सनातन गोस्वामी को हुई है, तीन तीन दिन तक समाधि में रहते थे जप करते समय, तो वो भी एक दिव्य आनंद है। ब्रह्मानंद तुच्छ है उसके सामने, जो ऐसे दिव्य आनंद के सामने। लेकिन सामने जो व्यक्ति बैठे हैं उनके पास 7 दिन हैं और उनका कल्याण करने के लिए मैं आ रहा हूं, तो मैं मेरी सारी दिव्य अनुभवों को बाजू में रखता हूं ना। आई विल ओनली डू करुणा प्रधान एक्टिविटी। इसलिए उन्होंने हृदय में, मराठी में शब्द है उत्सम्बलून, यानी वैसा भर भर के हृदय से आ रहा है उनको राधा रानी के विषय में कहने के लिए, लेकिन अपने आप को रोक रहे हैं, वो संयम कर रहे हैं। एक व्यक्ति के करुणा को प्रदर्शित करने के लिए, इसलिए श्रीमद् भागवतम राधा रानी का ही स्वरूप है। राधा रानी जो करती है वो पूरी प्रक्रिया का वर्णन अलग 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 लीलाओं के माध्यम से बताया गया है, वो है प्रेम और भक्ति। इसलिए श्रीमद् भागवतम राधा स्वरूप है। राधा रानी को, राधा रानी का नाम क्यों नहीं लिया ये हमारे गुरुदेव बताते हैं। एक तो मैंने बता दिया आपको कि वो सुखदेव जी सोच रहे हैं कि परीक्षित का क्या होगा, तो एक कारण है। दूसरा कारण है कि वो सभा में कई हजारों लोग बैठे थे, प्रयोजन परीक्षित महाराज के लिए है, उनके लिए कही जा रही है कथा, लेकिन कथा सुनने के लिए बहुत लोग आए हैं, और सब लोग शुद्ध भक्त नहीं है, सब लोग नारद मुनि, व्यासदेव और अगस्त्य मुनि और वो नहीं है, बहुत लोग उसमें ब्रह्मवादी भी है, योगी भी है, कर्मकांडी भी है, ज्ञानवादी भी है, सब लोग प्रकार के हर प्रकार के लोग हैं उसके अंदर। और राधा रानी का विषय जो है वो हर हर व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते, उसको आम जनता में, साधारण जनता में उनके विषय में चर्चा नहीं हो सकती है, इसलिए भी छुपा के रखा। और तीसरा एक कारण दिया है, वो बहुत हमारे लिए बहुत समर्पक कारण है, वो ये है, प्रभु जी आप थोड़ा सा साइड में, प्रभुपाद जी के साइड में खड़े हो जाइए, तो वो ये कारण दिया है कि कुछ चीज अगर समझो, विशेष करके हमारे संस्कृति में स्त्रियों का उदाहरण दिया जाता है कि जब स्त्रियां बहुत सुंदर होती है तो उनका सौंदर्य जो है उनको ढके रखना चाहिए। अगर आपके पास कोहिनूर हीरा है तो आप उसको कितने बार लपेटोगे, कितनी डब्बियों में डालोगे, फिर एक डब्बी दूसरे डब्बी में, दूसरे डब्बी बड़े डब्बी में, फिर बड़े डब्बी में, फिर एक बड़ा चांदी का लॉक में, फिर वो हमारे लॉकर के तीसरे लॉकर में उसको लॉक करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सौंदर्य वाली, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ऐश्वर्य संपन्न, बहुत मूल्यवान वस्तु है। मूल्यवान वस्तु को कभी हमको खुले में रखना नहीं चाहिए, कहीं यहाँ हो जाएगी तो कोई चोरी करेगा, गुम हो जाएगी किधर भी। तो मूल्यवान वस्तु जो अगर हम जानते हैं वो मूल्यवान है तो हम उसको ढक के, संभाल के, छुपा के रखेंगे। वैसे ही वैदिक संस्कृति में स्त्री का सौंदर्य छुपा के रखना चाहिए। जब कोई सौंदर्य छुपा होता है ना तो उसके बारे में कुतूहल बढ़ता है बहुत। तो राधा रानी का नाम छुपा के क्यों रखा? कि जब हम उसको खुले में बोलेंगे तो ठीक है, क्या बात है उसमें, लेकिन बार बार कहूंगा कथा में एक बात मैं आपको 7 दिन के बाद बताने वाला हूं और हर दिन उसको दोहराऊंगा कि वो बात अभी दो दिन के बाद बताऊंगा, फिर पहले बताया 7 दिन के बाद बताऊंगा, फिर बाद में 6 दिन के बाद बताऊंगा, बाद में 5 दिन के बाद बताऊंगा, तो आपकी उत्सुकता बढ़ेगी कि कम होगी? और पहले दिन बता दिया मैंने, तो लड़के ठीक है इस वाले भूल जाएंगे, लेकिन अगर मैंने ऐसे करके आपको बताया और 7वें दिन जनसंख्या एकदम प्रचंड, प्रभु जी आप बताने वाले ना आज, हम लोग उसके लिए आए हैं, आपने बताया था कि आज बताएंगे, संडे के दिन बताएंगे, तो सब लोग कथा में वेट कर रहे हैं, अभी कोई 1 घंटा कथा हो गई फिर भी नहीं बता रहे हैं, फिर कथा के एंड में बताया, अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ, वो मैंने बताई कि जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्रेम की प्राप्ति, और वो हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से आप कर सकते हो, तो आप उसको कैसे ग्रहण करेंगे? तो अगर कुछ चीज छुपाई जाती है तो आप उसके लिए उत्कंठा 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 बढ़ती जाएगी, और किसी भी चीज का जो लाभ है ना वो उत्कंठा के माध्यम से ही प्राप्त होता है, यानी आपकी जो आशा है आपकी जो अभिलाषा है वो कंठ तक आ गए ना, उत्कंठा कहते हैं उसको, इसके बाद रुक नहीं सकती हो, उत्कंठा जब उत्पन्न होती है लालायित होते हैं, लौल्यम प्रभु गोस्वामी बताते हैं कि लौल्यम हमारी कीमत है, मूल्य है हमारा ये सब प्राप्त करने के लिए, तो लौल्य उत्पन्न करने के लिए उन्होंने ये सब छुपा के रखा, किधर भी डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन आचार्य बता देखो यहाँ पर बताया वधु राधारानी का उल्लेख है, ये देखो यहाँ पर वधवा ये राधारानी की उल्लेख है, ये देखियो अनया राधिता मूलम, वो जो वो गोपी थी वो गोपी इतनी प्रिय है उसके पीछे हमको सबको छोड़ के चले गए हैं, उसका नाम ले लिया है वो गोपी जो सबके सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए हमको छोड़कर उसको साथ लेके चले गए हैं, तो हमें पता चल उत्सुकता होती है कौन है वो गोपी, क्या नाम है उसका, क्या उसका रहस्य है, क्या उसकी लीला है, क्या उसका व्यक्तित्व है, इसलिए जैसे हमारे दूध में घी होता है क्या, देखो सब माता जी ना बोल रही है लेकिन उत्तर हाँ है उसका, घी दूध में ही है, मक्खन दूध में है, मक्खन भी दूध में है, लेकिन आप बोलेंगे दूध को मक्खन दो तो निकलेगा क्या मक्खन, नहीं होगा, तो उसके लिए प्रक्रिया है, उसको आप पहले गर्म करो, पहले मंथन नहीं पहले गर्म पहले दूध को अधोटा, वो हमारे ब्रज की भाषा में कहते हैं अधोटा दूध, अधोटा दूध का मतलब है कि एक्स दूध होगा तो उसको हाफ एक्स बनाना है, 500 ml होगा तो उसको 250 ml बनाना है, ब्रज के स्टाइल में बनाना, आप आपको इच्छा है 250 किया फिर वो अधोटा दूध जो है वो मराठी में क्या बोलते हैं आटवून है ना, तो उसको वो मटके में रखना है मट्टी के, फिर वो ठंडा हो जाएगा, फिर गुनगुना जब हो जाएगा तो उसमें चुल्लू भर छाछ डालना है या तो दही डालना है, फिर वो इनक्यूबेट हो जाएगा, फिर उसका क्या होगा दही, और वो क्योंकि वो अधोटा गर्म करके रखा है उसके ऊपर मलाई भी आएगी बहुत सुंदर, उसमें आप अपना वो डालेंगे क्या जामन कहते हैं उसको, हाँ फर्मेंटेड वो जो दही होता है, फिर वो ओवरनाइट रखेंगे फिर उसका दही बनेगा, फिर आप अपने पास जो मलाई इकट्ठा करके रखी है वो डालेंगे उसके अंदर, और फिर उसका मंथन करेंगे, मंथन कैसे करेंगे दो तरफा करेंगे मशीन से, ट्र लस्सी वाला कैसे करता है एक ही तरफ होता है वो नहीं दो तरफ घर्षण वाला, उसमें वो दिव्य शक्ति आती है जब आप ऐसे घुमाते हो फिर ऐसे घुमाते हो फिर ऐसे घुमाते हो फिर ऐसे घुमाते हो, और फिर धीरे 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 अंदर छुपा हुआ मक्खन जो है वो ऊपर आ जाता है, स्टार्ट फ्लोटिंग वो तैरने लगता है, फिर जैसे पहले दर्शन देता है आपको निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आपको मंथन करते रहना चाहिए क्योंकि उसको भी एक साथ में आना जरूरी है, फिर और मंथन करते करते फिर सब इकट्ठा हो जाएगा, फिर पूरा आके तैरने लगेगा, फिर आपको एक बताता हूँ सीक्रेट क्या है उसका, आपको फिर गेहूं का आटा मलना है, उसका गूथना है, आटा बनाना है, हाथ में तेल लगा कर गूथना है, और फिर वो जो हाथ है ना जिसको हल्का हल्का तेल लगा हुआ है उसमें से आप जब घी निकालेंगे तो आपके हाथ को मक्खन नहीं चिपकेगा, सीधे पॉट में गिर जाएगा, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ कि मैं 25 साल तक बचपन में किया है, रोज एवरी सिंगल डे हमारे घर में 10 लोग थे और 4 लीटर दूध आता था, उसका रोज मैं मंथन किया करता था, सो वो आप निकालेंगे फिर उसको आपको उबालना है, तो उबालने की प्रक्रिया में सारा जो उसमें तथाकथित दोष होता है जो भी कुछ है वो मड़ी के रूप में बाजू में आ जाता है, और फिर वो क्लैरिफाई हो जाता है, बाकी सब नीचे बैठ जाता है, फिर वो गोल्डन येलो फाइन लिक्विड इज कॉल्ड घी घृत, घृत का निर्माण होता है ना, तो ये सब दूध में था ना, वैसे ही श्रीमद् भागवत दूध है, जब आचार्यों की कृपा से हम उसको श्रवण करते हैं और साथ में साधना का मंथन करते हैं, तो उस दूध में से फिर ये मक्खन और उसमें घी प्रकट हो जाता है। उसी तरह से श्रीमद् भागवत में भी आपको राधा रानी का दर्शन होगा। ये सब क्यों कह रहे हैं, हम कैसे कह सकते हैं, ये सब आचार्यों की कृपा है। ये वही समझाते हैं इस प्रकार से, हर चीज, जैसे मैंने कल भी कहा था, हर चीज में एक पारलौकिक स्तर होता है और एक लौकिक स्तर होता है। श्रीमद् भागवत आप सुन रहे हैं, यहाँ प्रहलाद जी आए, उनको हिरण्यकश्यप ने त्रास दिया, बहुत कष्ट दिया, फिर नरसिंह भगवान आए मार दिया, ये एक लेवल पे है। लेकिन आचार्य समझाते हैं उसका पूरा निचोड़ निकालते हैं, पूरा प्रहलाद के व्यक्तित्व का, नरसिंह भगवान के दया का, नरसिंह भगवान के अलौकिक स्वरूप का, उनके युद्ध का, फिर उसके बाद कैसे ब्रह्मा जी का सारे वरदानों का आदर रखते हुए कैसे, ये सारा रहस्य हमको आचार्य समझाते हैं। प्रहलाद के व्यक्तित्व, प्रहलाद कैसे महाजन है 12 महाजनों में से। आमतौर पर जब हम सुनते हैं ना कथा, तो हम प्रहलाद को एक बालक में समझते हैं, अरे प्रहलाद बालक, प्रहलाद ऐसे कहते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वो भक्त प्रहलाद नहीं है, वो प्रहलाद महाराज है। पहले हम लोग नरसिंह भगवान की जय भक्त प्रहलाद के करते थे, मैंने कुछ समय बाद भक्त प्रहलाद कहना छोड़ दिया, प्रहलाद महाराज की जय ही कहना चाहिए। हम कौन होते उनके सामने, हमारे मंदिर में भक्त किसको कहते हैं, भक्त प्रमोद, भक्त संतोष, जो अभी अभी आए हैं उनको भक्त कहते हैं, है ना। और उसके बाद में फिर वो दीक्षा लेके दास बन जाते हैं, फिर दास के बाद प्रभु बन जाते हैं, फिर वो आगे उनका प्रगति होती है। तो अगर हम हमारे मंदिर में नए नए आए भक्तों को भक्त कहते हैं, तो प्रहलाद को भक्त कैसे कह सकते हैं, वो तो महाजन है। तो वी कॉल हिम ऑलवेज प्रहलाद महाराज ओनली। तो ये एक स्तर पे भागवत सुनाई दे रहा है और आचार्यों की कृपा से उनके अंदर जो मक्खन है वो निकाला जा रहा है। इसलिए आचार्य बहुत जरूरी है। शास्त्र तो मार्केट में बहुत अवेलेबल है, मेडिकल में भी, सर्जरी गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स मेडिसिन सब किताबें मार्केट में अवेलेबल है। वो पढ़ के आप डॉक्टर बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते। आपको वो कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा, जो डॉक्टर ऑलरेडी बुजुर्ग हैं उसमें अनुभव भी है, उनके द्वारा ये सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उनका अनुभव लेना पड़ेगा, तब आपको एग्जाम देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं, फिर आप वो ही कर सकते हैं जो किताब में दिया है। मार्केट में किताब खरीद के कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, ऐसे मार्केट में केवल किताब खरीद के कोई भक्त नहीं बन सकता है। रसिक भक्तों का, प्रामाणिक भक्तों का, शिक्षा गुरुओं का आश्रय, मार्गदर्शन, कदम कदम पे, पद पद पर होना जरूरी है, तब जाकर उसका जो सार है वो हमको प्राप्त होगा। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत का सार जो है वो राधा रानी है। तो वो राधा रानी नित्य विहार करती है ब्रज में। मैंने एक बार दोबारा दोहराऊंगा कि यहां पर जन्म हो रहा है, वहां नारद मुनि को वहीं से जन्म स्थान से कुसुम सरोवर भेजा, तो वहां पर ऑलरेडी अष्ट सखियों की लीला चल रही है, अंतरंग लीला चल रही है। अरे जन्म तो अभी हुआ नहीं, जन्म तो एक निमित्त है, नैमित्तिक लीला है वो, नित्य लीला ब्रज में कॉन्स्टेंटली चल रही है। चाहे वो सत्ययुग का समय हो, जब गोवर्धन को वहां से वहां लाया गया था, तब भी ब्रज भूमि में नित्य लीला चल रही है। जब राम प्रभु आकर लीला कर रहे हैं अयोध्या में, तभी भी ब्रज में लीला चल रही है। हर युग में, हर क्षण ब्रज में नित्य लीला चलती रहती है। उसी प्रकार से राधा रानी और कृष्ण आकर जो लीला करते हैं उसको नैमित्तिक लीला कहते हैं। वो कुछ समय के लिए है, उसमें आपको दिखता है कि आए और इसमें दिखता है कि गए भी, वो आना और जाना दोनों उसमें, आविर्भाव और जाना भी उसमें सम्मिलित है। लेकिन उसके पीछे, उस पर्दे के पीछे, उस सामने वाले सीन के पीछे नित्य लीला चलती रहती है। और नित्य लीला का स्वरूप कैसा है कि समझो गोवर्धन में भगवान ने गोवर्धन उठाया है, तो भगवान निरंतर गोवर्धन उठा रहे हैं। गोवर्धन में अगर कोई चटपटी लीलाएं हुई है, रास्ता रोकने की, मटका फोड़ने की, वो भी वहां निरंतर हो रही है। एक ही साथ में सारी लीला उस स्थान की निरंतर रूप में विविधता के साथ हो रही है। नो मोनोटोनस रिपीटेशन, वही लीला उसी स्थान पर निरंतर होती रहती है। और संत लोग जो सिद्ध हुए हैं वो उन लीलाओं का दर्शन करते हैं। ये है गहराई, एक भागवत में पढ़ रहे हैं और एक वहां पर जो हो रहा है वो आपको अनुभूति हो रही है उसकी। इसलिए जो जो लीलाएं भागवत में नहीं है वो सब स्वामी हरिदास जी, हित हरिवंश गोस्वामी महाराज और सूरदास जी और कई लोगों के, जयदेव गोस्वामी, इन सारे ग्रंथों में उनकी मान लीलाओं का वर्णन आया है, जो उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किया है उसका। तो ब्रजभूमि ये एक चलायमान स्थिति है, इट इज अ डायनेमिक सिचुएशन. वहां पर भूमि तो है जो स्थिर दिखती है हमको, अचल, लेकिन वो बहुत डायनेमिक स्थिति है. कैसे, जब कभी ब्रज गोपियों को बरसाने से मथुरा जाना है तो वो कमल की तरह है ब्रज भूमि. इधर देखो, इधर मथुरा है, इधर नंदगांव बरसाना है, तो वो ऐसे हो जाता है. और हमको लगता है कि 50 किलोमीटर का अंतर चल के जाते हैं रोज, कोई गाड़ी बैलगाड़ी है ना उनके पास, तुरंत पहुंच जाते हैं. जब भगवान की इच्छा है तो वो कमल ऐसा ही रहता है, उनको बहुत देर तक चलना पड़ता है लीला के अनुसार. तो डायनेमिक है ब्रज भूमि, और वहां पर हर 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 स्थान जो है वो लीला से संपृक्त है, सैचुरेटेड विद लीला. हर जगह पर अपनी अपनी लीलाएं हो रही है. कहीं बलराम जी लीला कर रहे हैं, कहीं गोवर्धन उठा रहे हैं, कोई माखन चोरी कर रहे हैं, कोई माँ के गोद में स्तनपान कर रहे हैं, कोई पुतना का जहां वध, वहां पर निरंतर पुतना का वध होते रहता है. और केवल एक जगह ब्रजभूमि नहीं है, हर ब्रह्मांड में ब्रजभूमि है. अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में हर पृथ्वी क्षेत्र में जो भारत वर्ष है उसमें वृंदावन धाम प्रकट हुआ है. और हर जगह पर एक ट्रूप, एक जो टीम है, ड्रामा टीम, वो वहां पर लीला कर रही है कृष्ण के साथ. तो कितना डायनेमिज्म है देखो इसके अंदर. असीमता तो है, अमर्याद स्वरूप है उसका, ब्रज का. और एक साथ में सीमित भी है, असीम भी है. और एक जगह पर अनंत लीलाएं हो रही है. एक लीला टाइम बाउंड के रूप में हो रही है, एक लीला नित्य लीला के रूप में हो रही है. और जो गोलोक में होती है वो अलग लीला है, वो सेपरेट है. उधर वहां पर तो क्या कहें उसका, वो तो नित्य नित्य लीला है. वहां पर केवल नित्य सिद्ध जीव उनके साथ में लीला करते रहते हैं. यहाँ पर वो बद्ध जीवों को भी लेते हैं, बीच बीच में बद्ध जीवों को नित्य सिद्ध के साथ जोड़ देते हैं और ले लेते हैं. किन लोगों को जोड़ देते हैं? हर समय ठाकुर जी राधा रानी को लेकर और गोपियों को लेकर, ग्वाल बालों को लेकर, ब्रजवासियों को लेकर प्रकट होते हैं. उस समय जो जीव साधना में परिपूर्ण हो चुके हैं और गोलोक में एंट्री करने के योग्य हो चुके हैं, उनको भगवान डायरेक्ट गोलोक में प्रवेश देते नहीं हैं. उनको उस जगह पर जन्म देते हैं जहाँ पर वो लीला कर रहे हैं, भौतिक रेल्म, इन द मटीरियल रेल्म, जहाँ पर महाविष्णु का आधिपत्य है, जन्म मृत्यु का आधिपत्य है. ऐसे जगह पर वो उनको जन्म देते हैं जहाँ पर कृष्ण लीला कर रहे हैं. और उसमें आपका क्या भाव है, पांच प्रकार के भाव है ना, शांतरस, साख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य माधुर्य. तो हर एक जीव का एक स्थायी भाव होता है. आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं कि मैं मोर हूँ. ऐसे कुछ लोग थे प्रभुपाद जी के आंदोलन में, वो टेरेस पे ऐसे मोर की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैं मोर हूँ, आगे मुझे मोर बनना है, मैं मोर हूँ. प्रभुपाद जी ने उनको निकाल दिया इस्कॉन से. किसी एक और एक ग्रुप था, गोपीजन वल्लभ क्लब, गोपी भाव क्लब, कि उनको बताया गया था कि आपका साई भाव गोपी है, आपको अभी प्रैक्टिस करनी है गोपी. आप जो भूल गए हैं, आप जो है, जो आप भूल गए हैं उसको आपको प्रैक्टिस करना है, फिर धीरे धीरे आपका भाव जागृत हो जाएगा और आप फिर एक्चुअली गोपी बन जाओगे. ये सब बकवास है बाय द वे, विनोद को अपार्ट, दिस इज ऑल नॉनसेंस, डोंट फॉलो दिस. फिर भी सत्य ये है कि हर एक व्यक्ति का एक स्थायी भाव होता है. और वो स्थायी भाव अगर दास्य रस है तो दास्य रस के अनुसार वो कृष्ण लीला में दास्य रस का कौन अधिकारी है, कौन सा गोप है, उसको जोड़ देते हैं और उसकी सहायता से उसके दास्य रस का विकास होता है इन फील्ड. हमारे मेडिकल में होता है ना इंटर्नशिप, आप MBBS पास कर चुके हो लेकिन आपको इन फील्ड ट्रेनिंग दी जा रही है. वो CA में भी वो इन फील्ड ट्रेनिंग होती है, उसको क्या कहते हैं, आर्टिकलशिप कहते हैं. पास हो चुका है CA लेकिन उसको भी अभी प्रैक्टिस करना है बुजुर्गों के साथ, तो वैसे वो इंटर्नशिप है. उसमें वो जिसका गोपी भाव है उसको किसी गोपी से ही मुलाकात हो जाती है, किसी का वात्सल्य भाव है तो यशोदा से जोड़ दिया जाता है. ऐसे उनके सानिध्य में एक कृष्ण लीला का पूरा समय जो है टेन्योर, उसमें उनकी इन प्लान ट्रेनिंग होती है. उसके बाद वो परिपूर्ण होते हैं, फिर उनको गोलोक में प्रवेश मिलता है और फिर वो उसी रस में वहाँ पर जो उनके योग्य है उनके साथ में उनको जोड़ा जाता है. और जोड़ते कौन है यहाँ बीच में और एंड में, बताइए, आपके गुरु महाराज जिनकी दीक्षा आपने अभी ली है बद्ध अवस्था में भौतिक विश्व में, वही गुरु जी अलग अलग रूप में रहेंगे. वो इसी रूप में नहीं रहेंगे, इसी आकृति में नहीं रहेंगे, लेकिन आप उनको देखकर तुरंत पहचानेंगे ये प्रभुपाद जी है, ये हमारे गुरुदेव हैं. हमने कहा ना कि माय गुरु इज लोटस फीट इज ओनली शेल्टर फॉर मी, माय गुरु इज अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल नॉलेज एंड ऑल मर्सी. वही गुरुदेव आपको यहां से भी ट्रांजिट में मदद करेंगे, वहां भी जो अनुकूल व्यक्ति उसके जोड़ देंगे और वहां से आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो गौलोक में भी आपके रस के अनुसार कौन है उनको जोड़ देंगे। फिर आप ऐसा सोचना नहीं अभी गुरु की जरूरत क्या है, मेरा काम हो गया, मैं इनसे मिल गया, अभी आई विल गो अहेड विद दिस। नो, आपका उनका संबंध जो है वो श्री गुरुदेव के ही माध्यम से बना रहेगा, उनको टाल कर आप आगे जाओगे वो संबंध टूट जाएगा। तो गुरु जी की कृपा जो है वो यहां से आपको आवश्यक है, गौलोक धाम में चिरंतन जीवन में भी गुरु जी की कृपा आवश्यक है। और वो गुरु जी कौन है, वो राधा रानी के प्रतिनिधि है, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राधा रानी, बलराम जी एंड नित्यानंद प्रभु। इसलिए वो मायावादियों का सिद्धांत नहीं है कि गुरु जी बोट की तरह होते हैं, हम जमीन में होते तो बोट की आवश्यकता नहीं होती है, जो नदी में जाते हैं तो बोट की आवश्यकता होती है, तो बोट में बैठकर नदी पार करके उस पार जाना है, फिर बोट को छोड़ देना है, फिर हम पैदल चल के जाना है, ऐसे बताते हैं प्रवचनों में। वो गलत है 100%। गुरुजी बोट नहीं है, गुरुजी आपका हर क्षण का सहारा है, हर क्षण का प्रोत्साहन है, हर क्षण की कृपा गुरुजी से आती है। और जो भी कृपा आपको आवश्यक है, जो भी आप अर्जित करना चाहते हैं, वो केवल राधा रानी की कृपा से, गुरु के माध्यम से ही आपको प्राप्त होती है। आप राधा रानी से भी डायरेक्टली प्राप्त नहीं कर सकते। आप पुकारो, हे राधे कृपा करो, राधे किशोरी दया करो, वो आपका अधिकार है, लेकिन जब वो दया कृपा आपको देने को तय करेगी तो आपके हाथ में नहीं देगी, वो गुरु जी के हाथ से आपको देगी, उन्हीं के माध्यम से सारी कृपा का राज प्रकट होने वाला है। यू कैन नॉट से कि अरे आज तो मैं बरसाना वासी हो गया, अभी तो मैं राधा रानी को पुकारूंगा, गुरु को पूछने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो गया हमारा। वो उद्दंडता है, ऐसी उद्दंडता को हमारे आध्यात्मिक जीवन में स्कोप नहीं है, और उद्दंडता है तो आपको लगेगा मैं प्रगति कर रहा हूं, वो सारा आभास होगा आपका, देयर इज नो रियलिटी इन दैट, सो ओनली इल्यूजन, भ्रम में डोल रहे हैं हम, और सबको लग रहा है मैं भी बड़ा भक्त हूँ, आपको लग रहा है मैं बड़ा भक्त हूँ, सब लोग अपने अपने भ्रम में डोल रहे हैं, एक दिन वो फुगा जो है ना गुब्बारा फूट जाएगा, फिर सारा सत्य सामने आ जाएगा कि कौन किस पानी में है, कौन किस गहराई में पड़ा हुआ है। तो ये ब्रज भूमि का चलायमान डायनेमिक स्वरूप है, इसलिए जब जाते हैं ना बरसाने में तो डोंट डील विद द लैंड द वे यू डील विद द लैंड इन मुंबई और पुणे और बाड़ेर। जिस प्रकार से हम भूमि को यहाँ अपने आप को प्रस्तुत करते हैं वैसे बरसाने में वृंदावन धाम में प्रस्तुत मत करना, क्योंकि उसके कई अर्थ हैं। एक वो स्वयं राधा रानी का स्वरूप है, एक बलराम जी का ग्रॉस स्वरूप है, बलराम जी वो भूमि के रूप में प्रकट हुए हैं, वहाँ का ठाकुर जी का हर एक वस्तु, पीताम्बर से लेकर वैयक्तिक वस्तु, उनके उपयोग की वस्तु, उनका बेड, उनका कमरा, उनका जो भी कुछ है, उनके जूते, उनका कुंडल, उनकी मुरली, उनका मुकुट, मुकुट जो भी कुछ है, वो सब बलराम जी है, वो भूमि भी बलराम जी है। इसलिए हम मथुरा में सेशन में उतरने के पहले ही प्रणाम कर देते हैं, भाई हमको चलने वाले हैं उनके ऊपर, हमारे रेचेड फुट, हमारे पापी कर चरण उन पर चल के जाने वाले हैं, ब्रह्मा जी के ऊपर चढ़ने वाले हैं, शिव जी के ऊपर चढ़ने वाले हैं, तो हमें कितना जागरूक रहना चाहिए। इसलिए एक लौकिक बात है कि आप ट्रेन से निकालकर, टिकट निकालकर मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं, वो बरसाने में जा रहे हैं टैक्सी करके, फिर जाकर डोली में या तो मोटरसाइकिल पे या तो पैदल पहाड़ पे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी बात है पारलौकिक, जो अवेयरनेस, जो जागृति, आपको जो आप जो अलर्ट हैं कि मैं किधर हूँ और किसके साथ मेरा संबंध हो रहा है, कौन सी एनर्जी से मेरा परिचय हो रहा है, वो जब भावना होगी ना तो सारी एनर्जी, सारा स्पिरिचुअलिटी आपको आवृत्त कर देगी, यू विल बी कवर्ड बाय दैट ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ द धाम। और वो अनुभूति के अंदर राधा रानी की कृपा है, ऐसे डोल रहे हैं अभी, वो बोलते कि वो दानगढ़ जाएंगे ना तो बहुत अच्छे गोलगप्पे वहां मिलते हैं, वहां की लस्सी बहुत है, तो आपको कुछ लोग बताएंगे आप दानगढ़ जाओगे ना कुशल बिहारी मंदिर के पास, वो गोलगप्पे खाना मत भूलना, वो यात्रा नहीं है, आप खा सकते हैं, इसमें कुछ पाप नहीं है, मांस नहीं खा रहे आप, लेकिन वो याद करके खाना ये हमारी भक्ति और यात्रा नहीं है। हमारी यात्रा तब होगी सफल जब आप इस दिव्य चेतना में प्रवेश करोगे, राधा रानी के सर्कल में, राधा रानी के जो प्रभाव क्षेत्र है, कृपा क्षेत्र है, उसमें आप अवेयरनेस के साथ प्रवेश करोगे, जागृति के साथ, कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस, कॉन्स्टेंट अवेयरनेस कि मैं कहाँ हूं, तब आपका कुछ उनके साथ में संपर्क होगा और अनुभूति होगी। और आचार्यों को कदम कदम पर होती है, क्योंकि वो इतने पवित्र है, वो केवल उसी के लिए वहाँ रहते हैं और कोई उनका अन्य उद्देश्य नहीं है कि बिहारी जी जाओ तो वहाँ की लस्सी पीना मत भूलना, वहां पर गुलाब केसर की लस्सी मिलती है, राधा रमन के पीछे केसर की लस्सी मिलती है, बहुत फेमस है वो, बिना पिए बिना आपकी वृंदावन यात्रा सफल नहीं हुई है। वो रघुनाथ जी के सामने एक दूध वाला बैठता है, वो गोल 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 घूम के उसको ऐसे ऊपर नीचे फेंटता है दूध को, उसके कितने वीडियो आते हैं, उसका दूध पिए बिना आपकी वृंदावन यात्रा सफल नहीं है। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन वो हमारी यात्रा का उद्देश्य नहीं है। राधा रानी की कृपा आपको वहां नहीं मिलेगी, आपको आनंद आएगा बहुत, लेकिन हम लोग वृंदावन में क्यों जाते हैं, राधा रानी की कृपा को ग्रहण करने जाते हैं। अब मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ। हाँ, उन्होंने कहा ना कि बसेस आर रेडी, प्लीज बोर्ड द बसेस, है ना, ये तो बाद में है, ये आप वृंदावन धाम में प्रवेश करेंगे, रूम में चेक इन करेंगे, एक रात प्रसाद पाएंगे, अगले दिन आपको अनाउंसमेंट करेगा कि 6 बजे बस निकलेगी, आप रहा तैयार रहो, ऑलरेडी ब्रज में आ चुके। ये तो स्टेशन से उतरते समय की बात है। 1986 में मैंने कहा था ना, वो स्वप्नवत यात्रा थी हमारी 22 लोगों की महाराज के साथ। स्वप्नवत यानी वो अभी स्वप्न ही में, स्वप्न में रहेगी, वो हमारे लिए अस्तित्व में थी, वो स्वप्न में ही रहेगी 22 लोगों के साथ। उस यात्रा में हम लोग सब लोग थर्ड क्लास अनरिजर्व ट्रेन में गए थे, यानी अगर बाथरूम जाना होगा ना तो हम लोग वो ऊपर वाले बर्थ से फिर उधर से उतरते थे, और बाथरूम में बहुत लोग खड़े करते होते थे, हम बोले बाहर आ जाओ हमको जाना है, ऐसे प्रकार से यात्रा की थी हमने, फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस अनरिजर्व्ड। तो गोद में भी एक यात्री बैठा हुआ है। हाँ, हमारे गोद में, गोद के बाजू में, गुपे पैर के नीचे, पैर के सामने, सब जगह यात्री यात्री। तो वो यात्रा में जब हम पहुंचे मथुरा स्टेशन पे, तो परम पूज्य राधानाथ महाराज हमको रिसीव करने के लिए मथुरा स्टेशन आए थे। इमेजिन, वो भी एक स्वप्नवती बात है। और हम लोग उतरे ऐसे थके बिके, कितना घंटा यात्रा किया था इतना तकलीफ में। हाँ, कुछ लोग मलमूत्र को दबाए बैठे थे, कोई जाना ही नहीं है, उतर के जाएंगे, इतना कौन जाएगा, ऐसे कष्ट में उतरे। तो महाराज जी ने उधर ही एक छोटा सा जगह देखा, बहुत गंदा था, बहुत भीड़ भाड़ थी उधर, और उनको बिठा दिया उधर, उधर ही एक प्रवचन दे दिया, वेलकम प्रवचन। इमेजिन कितनी कृपा है। देखो आप, हम लोग बच्चे थे, ऐसे पढ़ाई करने वाले कॉलेज में, ऐसे नए नए युवा अवस्था में थे, थके हुए थे, पहली बार लाइफ की पहली यात्रा जो है वो हो रही है अभी, उसके पहले नासिक भी नहीं गए थे, उधर किधर भी नहीं गए थे, सीधे वृंदावन धाम। इमेजिन कितने अपराध हो सकते हैं अगर हम को जानकारी नहीं दी जाती है तो। कभी लगाएगा वो साइट सीइंग, अरे अनदर प्लेस टू गो, व्हाई नॉट एंजॉय। हाँ, कोई गुरु जी साथ में है, अच्छा है, उनका भी कुछ सुनेंगे। लेकिन उन्होंने उधर ही प्रवचन दिया, बहुत बातें बताई, उस पर एक बात मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, वो जो आपको बता रहा हूँ आप भी याद रखना उसको। उन्होंने कहा था कि ब्रजभूमि जो है वो बलराम जी का स्वरूप है, ब्रजभूमि जो है वो राधा रानी की क्रीड़ा स्थली है, राधा और कृष्ण की लीला स्थली है, वहाँ पर नित्य विहार करते रहते, वो प्रेम की लीलाओं का प्राकट्य यहाँ पर होता है। तो ब्रजभूमि में पहला कदम रखते ही, रखने के बाद निरंतर वापस जाने तक हृदय के अंदर के कोने में श्रीमती राधा रानी का निरंतर ध्यान और कृपा याचना करती रहनी चाहिए। इंग्लिश में From the moment you put your first foot on the bhumi of Braj, constantly keep praying for the mercy of Radharani in the innermost chamber of your heart. क्योंकि उसके बिना ब्रज में प्रवेश नहीं होता है। जो राधा रानी की कृपा याचना नहीं करता है और यहां वहां भटक जाता है, ये खरीदता है वो खरीदता है, ध्यान भटक जाता है, कभी कभी थकान भी ध्यान भटका देती है कि बहुत थक गए तो अभी किसी में दिल नहीं लग रहा है, कभी बहुत खा लिया है तो नींद आ रही है तो किसी में ध्यान नहीं लग रहा है, कभी कुछ झगड़े हो जाते हैं तो आपका मन विचलित होता है कि अरे मैंने सीट थी, मैं बैग रखा था, आप क्यों आके वहाँ बैठे, मेरा सीट है, फिर झगड़ा हो जाता है, फिर कभी मोबाइल गुम हो जाता है तो सारा ही हमारा सर्किट टूट जाते हैं। मोबाइल गया तो जैसे लाइव बॉडी में से सोल चला गया ना, वैसे ऐसा अनुभव होता है। हाँ, व्हेन यू कैन इमेजिन व्हाट डेथ मस्ट बी व्हेन यू लूज मोबाइल, what kind of experience will be there, something you lost which is essential aspect of your life. तो ऐसा है, तो ये बात बताना जरूरी है कि आप लीला भी सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हृदय के अंदर के कोने में राधा रानी की कृपा की याचना करते रहने चाहिए, राधे किशोरी दया करो। और उसका एक्सटेंशन ये है कि वो मुंबई आने तक ही प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, जहां कहीं भी आप रहेंगे, जहां कहीं भी जीवन काट रहे हैं, वो हर दिन राधा रानी की कृपा की याचना करनी है। इसलिए ये छोटा सा वाक्य आप बाय हार्ट कर दो, राधे किशोरी दया करो। बीच में जप में भी कभी कभी राधे किशोरी दया करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद, राधे किशोरी दया करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये आदत लगा लो, क्योंकि वो केवल ब्रज यात्रा में आवश्यक नहीं है, वो जीवन भर आवश्यक है। वह आपने बताया ना, बस में बैठ जाओ, हमारी जीवन भी एक तीर्थ यात्रा है। आवर लाइफ इज ओनली यात्रा, गोइंग टू होली प्लेसेस। बीच का जीवन जो है वो यात्रा करने के लिए अनुकूल, जैसे भी अरेंजमेंट बनाना है उसके लिए, वो किसके लिए है। बट आवर लाइफ शुड बी वन यात्रा टू अनदर यात्रा, उसके लिए हमको जीना है, क्योंकि धाम वास हमारे भक्ति प्रक्रिया का एक प्रमुख अंग है। और रूप गोस्वामी ने वो जो भागवत में राधा रानी छुपी हुई है उसको भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ से डायरेक्ट प्रकाशित कर दिया। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु प्रत्यक्ष राधा रानी है। अगर आपको राधा रानी का परिचय करना है, राधा रानी के व्यक्तित्व को मिलना है, आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए। राधा रानी के व्यक्तित्व में कितने सारे पहलू है, वो सारे पहलुओं का शास्त्रोक्त तरीके से चर्चा भक्ति रसामृत सिंधु में की गई है। साधना से लेकर फिर सिद्धि से फिर हर एक रस का विवरण, पूरा विस्तार रूप वर्णन, फिर अगले रस का वर्णन, फिर अगले रस का वर्णन, फिर माधुर्य रस का इतना वैचित्र रूप में वर्णन किया उसके अंदर। कौन कहता है कि प्रभुपाद जी के आंदोलन में रस की चर्चा नहीं हुई है? कौन से रस की चर्चा नहीं हो बताओ? हर प्रकार के रस के आपको कई लोग बताएंगे कि प्रभुपाद जी ने दिया ही क्या है, क्योंकि वो जिन लोगों को भक्त बना रहे थे वो सब ड्रग एडिक्ट थे, वुमनाइजर्स थे, गैम्बलर्स थे, मीट ईटर्स थे, सब पापी थे, हर प्रकार का पाप करते थे। अरे वो स्वयं बहुत सिद्ध थे, रसिक भक्त थे, लेकिन उनके पास से लेने वाले तो ऐसे ही थे, तो उनको क्या रस की परिचय कराएंगे वो, ऐसे बहुत लोग कहते हैं। वो सत्य नहीं है। प्रभुपाद जी ने भले हर प्रवचन में कहा यू आर नॉट दिस बॉडी योर स्पिरिट सोल, क्योंकि लोगों को बताना जरूरी है बार बार यू आर नॉट दिस बॉडी, क्योंकि आप कितना भी उनको ऊपर उठाएंगे फिर वो गुरुत्वाकर्षण से नीचे आ जाते हैं, है ना, ग्रेविटी फोर्स। गुरु जी लिफ्ट्स यू टू ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म, लेकिन वापस फिर ग्रेविटी माया में आ जाती है, तो बार बार उनको बोलना पड़ता है यू आर नॉट दिस बॉडी योर स्पिरिट सोल। आपका अपमान नहीं है, वो आपको जगा रहे हैं। लेक्चर में भी कैसे हरे कृष्णा, क्यों? क्योंकि कुछ लोग सोते हैं, उसको जगाना पड़ता है। भाई कथा और ये सुनो आप कथा। तो सारे रसों की चर्चा की गई है, तो हमको कहीं यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं। अरे ये बाबा, ये महाराज वहां पर कोई ब्रज में वो कथा सुना रहे, वो सुनो, नो नीड। सुनने में अपराध नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है। अपने घर में जो धन छुपा हुआ है वो पहले एक्सप्लोर करो, फिर दूसरों की तिजोरी में क्या है वो ढूंढो। वैसे भी आपका अधिकार केवल आपके घर में जो धन है उस पर ही हो सकता है, दूसरों के घर के तिजोरी में क्या रखा है जानकर भी आपको वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपका अधिकार नहीं उसके ऊपर। आई कैन नॉट टेक द नेकलेस फ्रॉम माई नेबर्स ट्रेजरी और लॉकर, बट आई कैन टेक माई नेकलेस एंड वेयर इट, बिकॉज इट्स ओनो, इट्स बिलोंग टू मी, माई फादर हैज गिवन मी इन हेरिटेज। तो जो मेरे पिताजी ने वंश वसीयत में मुझे दिया है उसमें मेरा अधिकार है, वो लेने में मैं चूक रहा हूं और दूसरों के तिजोरी में गिनती कर रहा हूं कौन से गहने हैं। इसको कहते हैं आध्यात्मिक व्यभिचार, स्पिरिचुअल एडल्ट्री, टेकिंग इंटरेस्ट इन टू अदर्स वेल्थ मोर देन योर ओन वेल्थ विच इज अवेलेबल एंड गिवन टू यू, एलोकेटेड टू यू। तो इस बात पर मैं कहना चाहता था कि हमारी जीवन जो है वो यात्रा है। प्रभुपाद जी को चार प्रकार के ब्रजवासी होते हैं। एक ब्रजवासी वो है जिनका जन्म ब्रज में हुआ है, राधा रानी की कृपा से उनकी योग्यता ऐसी है कि अनंत जन्मों के पुण्य प्रेम प्राप्त हुआ है उनको, इसलिए वो उनको योग्य समझते हैं, उनका वो ज्ञान निकाल देती है कि मैं भगवान हूँ और हम भगवान हैं, और उनको जन्म देते हैं, वो सबसे भाग्यवान जीव है। दूसरे प्रकार के ब्रजवासी वो होते हैं वो भाई और कहीं जन्म लेते हैं लेकिन ब्रज पर प्रेम उत्पन्न होता है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर उधर ही बस जाते हैं। कई लोग ऐसे अमेरिकन, इंग्लैंड, यूरोपियन है जो अपना सारा कारोबार छोड़ के उधर ब्रज में झोपड़ी में रहते हैं, एक्चुअली उनकी तरफ से झोपड़ी है, इतने बड़े बड़े महल में रहते हैं अमेरिका में, तो वहाँ पर एक छोटा सा वन रूम टू रूम किचन का फ्लैट लेते हैं, वहाँ पर रहते हैं, साइकिल में घूमते हैं, एक महीना जाते हैं और 11 महीने का कमाई करके आते हैं, फिर साइकिल में घूम के गरीब से रहते हैं, ब्रज में रहते हैं। इतनी श्रद्धा है उनको, मैं बहुत उनको सराहना करता हूँ कि हम भी इंडियन हैं, भारत में रहते हैं, भारत का पूरा कल्चर, वेदर, सबको हमारी पहचान है। हाँ, हम पहचानते हैं कि ऐसा खाना खाते हैं, कैसा स्पाइसी, जो भी कुछ है, हम उससे बहुत एडजस्टेड है ऑलरेडी, वी आर ऑलरेडी फिक्स्ड, हमारे कुछ नया नहीं है। पंजाब में जाएंगे तो भी हमको वहाँ की रोटी सब्जी अच्छी लगती है, साउथ में जाएंगे तो भी वहाँ का दाल चावल सांभर अच्छा लगता है, बिकॉज वी आर इंडियंस। लेकिन बाहर से आकर इस कल्चर में सेट होना, इतना प्रेम और आकर्षण राधा कृष्ण के प्रति होना कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए, तो हर दिन मैं देखता हूँ, हर दिन हर एक फॉरेनर भक्त जो है वो पेट से बीमारी से परेशान रहते हैं। तो यहाँ का पानी, यहाँ का स्पाइस, यहाँ का भोजन सूट ही नहीं होता है। किस किस की पत्नियाँ तो परमानेंट पेट की मरीज ही बनी रहती है, बिकॉज उनका कभी फिजिकल सेटलमेंट हुआ ही नहीं, दिल से सेटलमेंट हो गया है कि मुझे वृंदावन रहना है। तो रहते हैं वैसे लोग, तो दूसरे प्रकार के ब्रजवासी है। हम भी जब बम्बई, दिल्ली, कानपुर, बाणेर जाते हैं, वहाँ पर बस जाते हैं, तो हम भी सेकेंड टाइप के ब्रजवासी हैं। क्योंकि ब्रजवासी कौन होता है? जो ब्रज में वास करता है ना, एक जन्म से वास करता है, एक जाकर वास करता है। तीसरे प्रकार के ब्रजवासी होते हैं जो यात्रा में जाते हैं, जो 15 दिन 8 दिन ब्रजवास करते हैं, वो भी ब्रजवासी हैं। इसलिए महाराज जी बताते हैं कि आपको धाम में धाम वासियों का अपराध नहीं करना चाहिए, और बाय द वे आपके साथ जो भी आए हैं वो भी धामवासी हैं, तो कुछ समय के लिए वो भी धामवास कर रहे हैं। तो डोंट जस्ट थिंक कि वो जो जन्म हुआ है ना उनका अपराध नहीं करूंगा, ये तो क्या है, हमारे साथ में है, छोड़ो उनको, हम झगड़ा करेंगे सीट के लिए, भोजन के लिए, स्वीट के लिए, नो, उतने समय के लिए वो भी धामवास कर रहे हैं। सावधान रहना, भगवान के अकाउंट में वो भी धामवासी है कुछ समय के लिए। और चौथे प्रकार के धामवासी जो होते हैं ना, वो धाम में रहते नहीं है लेकिन धाम में ही रहते हैं सदैव हृदय से, जैसे हमारे प्रभुपाद जी। फिजिकली क्या दिख रहा है? प्रभुपाद जी वृंदावन धाम को बुजुर्ग वृद्ध अवस्था में छोड़ के चले गए। सारे ब्रजवासी जो उनके मित्र थे, जो भक्त संत साधु थे, उनको ताने दे रहे हैं, कैसा साधु है, एक तो बुढ़ापे में ब्रज में आया, सही काम किया, वृद्ध अवस्था में ब्रज में आना चाहिए, पता नहीं कब शरीर छूटेगा, तो यहीं पर छूटना चाहिए भजन करते करते ब्रजभूमि में। ये ब्रज में आया, कुछ समय रहा और ब्रज छोड़ के जा रहा है, बोले कैसे साधु हो आप, आपको उतनी स्पिरिचुअल अक्ल नहीं है, छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन वो यहां से ब्रज को अपने हृदय में भाव रूप में ले गए, और जो जो प्रचार किया, जिन जिन को प्रचार किया, उनके मन में ब्रज के प्रति आकर्षण निर्माण किया उन्होंने, और वो आकर्षण की वजह से लालायित होकर वो लोग ब्रज में आए, सब लोगों को व्हाइट एलिफेंट्स को लेके ब्रज में आए, और सब नाचे और देख के लोग हैरान हो गए। जिन्होंने 30 साल तक उनको प्रणाम नहीं किया था, वो धड़ाधड़ प्रभुपाद को प्रणाम करने लगे, क्योंकि हम लोगों को गोरी चमड़ी का बहुत लालच है, कुछ गोरी चमड़े वाले लोग करते हैं तो हम लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं। वही चीज उन्होंने यहाँ पर 30 साल बताई, किसी गेहूं में चमड़े वाले लोगों ने नहीं सुना उसको, जब गोरी चमड़े वाले ने सुना, स्वीकार किया, सर मुंडवाया, गेहूं वस्त्र धारण किया, डंडा लिया और यहाँ पर आए और यहाँ नाचे, सब लोग धड़ाधड़ प्रणाम कर रहे हैं, ये हमारा गौरव नहीं है? दिस इज व्हाट यू कॉल लांछन है हमारे पर। ये हमारा ही धन जब वेस्टर्न जाके रिटर्न होता है ना, फॉरेन रिटर्न, तो हम उसको तुरंत खरीदते हैं। यहाँ का ही वो भिवंडी का कपड़ा जो है वो वहाँ पर इंग्लैंड में कभी कभी हम लेते हैं खरीद के, और कोने में लिखा रहता है मेड इन भिवंडी, वहाँ पे बहुत चाव से लेते हैं हम लोग। वैसे ही वो भिवंडी की धोती जो है वो वृंदावन में जाके गंगा प्रसाद से खरीदते हैं तो बड़ा आनंद आता है, बाद में देखता है तो भिवंडी का ही है, इधर से गया हुआ है। सो दैट इज आवर डेफिशिएंसी। तो प्रभुपाद जी ने 14 साल सारे विदेशों का भ्रमण किया पृथ्वी का, और फिर ब्रज में आए, अपना पूरा आंदोलन स्थापित किया, 108 मंदिर बनाए, 10,000 से ऊपर लोगों को दीक्षा दिया, सैकड़ों मंदिर बनाए, हजारों शिष्यों को बनाया और लाखों किताबों को वितरण किया, 80 किताब स्वयं लिखे, उसके कई प्रतियां वितरित की गई। और वो प्रभुपाद जी फिर दशम स्कंद का 14वां अध्याय ब्रह्म सम्बोधन लीला का अनुवाद करते करते वृंदावन के अपने कर्म में शरीर छोड़ दिया उन्होंने। गुरु जी का दर्शन करते हुए कोई इच्छा नहीं, संपृक्त होकर प्रेम भक्ति से आंसू बहाते हुए गुरु जी की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ब्रजभूमि में अपना शरीर छोड़ा। तब वही सारे साधु उन्होंने प्रभुपाद जी को सराहना किया, दिस इज रियल ब्रजवासी। उनको भी एक बाह्य रूप की घटना का दर्शन करना पड़ा इनको मानने के लिए, लेकिन वो खरे ब्रजवासी पहले से ही थे, जब वहां से छोड़ के अमेरिका गए थे, वहां अमेरिका निवास कर रहे थे, अमेरिका वासी थे, तभी भी वो ब्रजवासी थे। लेकिन पहचान करने में टाइम लगता है, सूरज तो होता ही है, रात में भी होता है सूरज, लेकिन वो सुबह दिखता है तब मानते अरे है सूरज यहाँ पर, बट सूरज कभी नहीं होता, ऐसा है क्या? इज ऑलवेज देयर. वैसे ही प्रभुपाद जी का जो धाम वास है वो चिरंतन नित्य धाम वास है. तो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम भी वैसे धामवासी हो सकते हैं. जरूरी नहीं कि हमारा शरीर हर समय धाम में रहे. हो, मौका मिलता है अच्छा है, बार बार जाने को मिलता है, सेवा मिलती है वहां पर तो अच्छी है, आपको कृपा है आपके ऊपर. लेकिन नहीं मिलता है तो भी आपको कोई रोक नहीं रहा है, क्योंकि देर इज नो मटीरियल इम्पेडिमेंट टू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. प्रभुपाद जी ने कहा है ना कि आध्यात्मिक उन्नति में कोई भौतिक बाधा नहीं है, देर इज नो मटीरियल इम्पेडिमेंट. तो इस तरह से वो चौथे दर्जे का धाम वास जो है वो हमको करने को सीखना चाहिए. उसके लिए वहां जाना पड़ेगा, आपको यात्रा करना पड़ेगा. तीसरे प्रकार का धामवास करेंगे तो चौथे प्रकार का धामवास कर सकते हैं, क्योंकि तीसरे प्रकार के धामवास में जब हृदय से बिना डिस्ट्रैक्ट होते हुए हम उस बरसाना धाम में अपने चित्त को लगाएंगे, उनकी कथाओं को सुनेंगे, उन जगहों को अपने हृदय के अंदर के पटल पर फिक्स करेंगे और उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, उस नोट्स को पढ़ते रहेंगे ताकि वो सारे स्थान हृदय में बस जाएं, कथा के साथ, वहां पर हुए अनुभव के साथ, वहां पर महाराज ने क्या बताया, किस प्रकार से साक्षात्कार हुए, उसके साथ अगर हम रिवाइज करते रहेंगे तो आप धाम से अलग नहीं, आप धाम में ही हो, आप बरसाने में ही हो, आप गोवर्धन में हो, वृंदावन में ही हो. हर समय राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन, इसका अर्थ है कि आप ब्रजवासी कर रहे हैं. ये समझ में आएगा तो आपकी यात्रा सफल है. आप ऐसे यात्रा टूरिस्ट के रूप में करेंगे तो कुछ धामवास नहीं होता है, उसमें भी नहीं होता है और बाद में भी नहीं होता है. हाँ, बसेस निकली नहीं अब तक ना, ठीक है. तो अभी हम बरसाने के धाम में प्रवेश करेंगे. सॉरी प्रभु जी, ये मेरा रोग है प्रभु जी, क्या करूं. निवारण ही नहीं होता है उसका. तो बरसाने में जो पहला पहाड़ है वो भानुगढ़ है, उसमें राधा रानी का निवास है, पूरा परिवार वहां रहता है, कृष्णानु महाराज, कीर्ति मैया, श्रीदामा, राधा रानी और अनंग मंजरी. और उसमें इतनी लीलाएं हुई है कि जैसे फॉर एग्जांपल राधा रानी को वो वरदान प्राप्त हुआ ना कि दुर्वासा मुनि से कि आपके हाथ से जो भी बनेगा वो अमृत तुल्य होगा, स्वाद में जो भी खाएगा वो हर रोग से मुक्त रहेगा और सदैव विजयी रहेगा. तो मैया को लगा, यशोदा मैया को, कि अरे इसके हाथ से खाना तो मैं लाला को मिलना चाहिए, बेस्ट ऑफ बेस्ट फूड. तो हमारे गुरुदेव ने मेरे ख्याल से 2003 या 4 में वो लेक्चर दिया था. उसके बाद में ना मंदिर में लेक्चर होना असंभव है, क्योंकि मंदिर में इतनी भीड़ होती है, और वो एक भीड़ होती है और एक होती है पंडाओं की भीड़. वो राधानाथ महाराज आ गए, सारे पंडा जो लेक्चर के बीच में, महाराज जी अरे कछु दे दो, हमें भी कछु बोलने दो, अरे हमको भी दिलवा दो, वो कथा चल रही है वहाँ पर उसमें बीच में, इसलिए वहाँ पर आगे कथा नहीं हुई, क्योंकि वो बहुत कथा होना मुमकिन नहीं है, इतना शोर होता है. तो वो कथा आप जरूर सुनिए, उनको वो जो बॉक्स है ना, वो बॉक्स, वो ट्रांसेंडेंटल वाणी कथा, जो क्या नाम है उसका, जो भी लाल और वाइट गोल्डन रंग का बॉक्स है, उसके अंदर वो कथा है, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे एक उत्सव वहाँ पर किया गया कीर्ति महल, भानु महल में, और उस महल में वो उत्सव किया तो उसमें यशोदा, नंद महाराज, रोहिणी, कृष्ण, बलराम को भी बुलाया गया. तो उसमें राधा रानी जो है वो बहुत सुंदर रसोई संभाल रही थी, हाँ, शी वॉज कुकिंग, और अपने हजारों सखियों को हजारों चूल्हों पर एक साथ काम पे लगाकर सबको कंट्रोल कर रही थी, वो नियंत्रण कर रही थी, कोऑर्डिनेट कर रही थी. इमेजिन, छोटी सी लाली, 4-5 वर्ष की होगी, उतने छोटे समय में, उम्र में वो पूरी रसोई, उस समारंभ की रसोई जो है वो संभाल रही है. तो यशोदा देवी के मन में तो है ना वो कि कब कैसे पूछूं, कैसे पूछूं, कैसे पूछूं. तो उनको लगता है कि ये अच्छा अच्छा समय है, अभी हमारी ऑफिशियल मुलाकात हो रही है. तो यशोदा माई, कीर्ति माई जाके भानु महल के रसोई में प्रवेश करते हैं, और यशोदा माई उनको देखती है कि कितनी मग्न होकर, उनको पता भी नहीं कि यशोदा मैया देख रही है, मेरी मैया भी आई है, दूर से देख रहे हैं, और इतना बड़ा किचन में हजारों सखियों के साथ में अनेक प्रचंड प्रकार के सुंदर व्यंजन बनाए जा रहे हैं. तो फिर वो देखकर मैया बहुत मोहित हो जाती है और कहते हैं, कीर्ति, उनको बहुत फ्रेंड्स थे ना, वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, कि एक आपको निवेदन करना था कि आपकी लाली मेरे लाला के लिए भोजन कर सकती है क्या, बना सकती है. उनके मन में भी बहुत दिन से ये विचार है कि इनकी जोड़ी बहुत बढ़िया है, राधा और कृष्ण की, इनका विवाह होना चाहिए, लेकिन बात छेड़े कैसे, बात छेड़े कैसे, दोनों को संकोच है. तो इस बात को जब भी निवेदन होता है तो कीर्ति मैं तुरंत उसको पकड़ती, तुरंत हाँ कर देती है कि भाई कहीं ना कहीं शुरुआत तो होनी चाहिए ना। तो उस दिन से फिर राधा रानी नंदगांव जाने लगती है और वहाँ पर भोजन बनाना शुरू करती है। यशोदा माई पावन सरोवर के किनारे पे उनका प्राइवेट घाट है यशोदा घाट, वहाँ पर एक मीठे पानी का कुआं बनाती है और वहीं रसोई की व्यवस्था करती है और वहीं राधा रानी अपनी सारी सखियों के साथ आकर रोज कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के लिए भोजन बनाती है। राधा रानी एक विशेष भोग बनाती है, कभी कभी वो नहीं जा पाती समझो किसी कारण, तो वो एक बहुत सुंदर लड्डू बनाती है, इसका नाम क्या है बंटा भोग। वो मेरा हाथ है ना इतना बड़ा होता है ऐसा, वो हाथ तो आधा ही दिखा रहे हैं ऐसा पूरा ह्यूज। और वो आटा और रवा इससे बनता है, घी आटा रवा इलायची सब बनता है और वो राधा रानी बनाती है। क्यों? जब भी नहीं जा पाती है तो कहते हैं कमरा भर के लड्डू बना के जाती है, वो डब्बा भर के नहीं कमरा भर के ही, ताकि कम ना पड़े जब मैं आऊँगी। और वो लड्डू जो राधा रानी के भाव से आप भी बनता है, आज नंदगांव के गोसाई राधा रानी के भाव से उसको बनाते हैं। वो लड्डू नंदगांव के गोसाई जो वहाँ बनाते हैं वही लड्डू नंदगांव के उन्हीं गोसाइयों ने मेरे घर पे आके बनाया है, फिर भी उसको वैसा स्वाद नहीं आया है। बहुत अच्छे बने लेकिन वो वहाँ का स्वाद जो है भूमि का क्षेत्र का जो स्वाद है जल का वायु का भूमि का वहाँ का जो वाइब्रेशन है उसका स्वाद नहीं आया उसके अंदर। तो वो आज भी बनाते हैं और वो जो बंटा भोग है वो राधा रानी के भाव से कृष्ण भगवान को बलराम जी को लगाते हैं, उस पर तुलसी रखते नहीं है जब भी खाओ, क्योंकि तुलसी रखे तो वो क्या है ना वो ग्रहण हो गया भाव, दूसरा अगर करने तो दोबारा करना पड़ेगा, वो एक ही भोग है बिना तुलसी के लगता है। और कबड़ भरे रहते हैं उस लड्डू के, वो धनसुखा मनसुखा है ना वो दर्शन में नंदगांव में, वो उस कबड़ की ओर ही देखते रहते हैं। आप देखो जाके, वो पुजारियों ने पुरोहितों ने कई बार उनकी मूर्तियां ऐसे करके दर्शकों की तरफ उनका ध्यान करने का प्रयास किया है, कुछ देर बाद फिर कबड़ की ओर। दिस इज अ रियलिटी, आई एम नॉट लिंग एनीथिंग, आप जाके अनुभव करो उसको। सदैव उनकी दृष्टि वो बंटा भोग के कबड़ पे रहती है क्योंकि वो राधा रानी के भाव से बनता है। तो ये लीला भानु महल में हुई है। एक लीला आपको सुनाता हूं, वैसा है ना कि वो कृष्ण हमारे जो है ना वो चालाक है, चोरी में इतने एक्सपर्ट है, खाली माखन चोरी नहीं करते हैं, अरे बात कर रहे हैं सखी के साथ में तो उसका यहाँ का गहना गायब, उसका एक कुंडल गायब, ऐसे मतलब यू डोंट इवन नो, वो इतने मग्न होकर बेचारी भोली भाली गोपियाँ उनके साथ संवाद करती है संग करती है, कभी उनका क्या क्या चुरा लेते हैं समझ में नहीं आता है। जब घर जाती है तो मैया पूछते अरे कुंडल कहाँ गया, बोले पता नहीं कहाँ गया। कभी कभी वहीं बात करते करते उनको जब आलिंगन देते हैं तो उनके खिस्से में हाथ डाल के तो वो उनको वो कुंडल प्राप्त होता है, यू अंडरस्टैंड। तो ऐसे माखन चोरी करते हैं, दही चोरी करते हैं, गहने चोरी करते हैं, हर चीज चोरी करते हैं, वस्त्र भी चोरी करते हैं, परेशान कर दिया गोपियों को। तो उन्होंने सोचा कि एक बार ना उनको अभी ऐसा सबक सिखाते ना कि वापस कभी चोरी नहीं करेंगे। तो अभी क्या आता है ना, अभी हर बार मक्खन लेके आते हैं तो वो नोक झोंक वो सब छिना झपटी सब वो वाद विवाद होते रहता है, फिर एंड में मटकी फूटती है, फिर वो ले लेते हैं। तो आज कहते हैं कि अभी कुछ विरोध नहीं करेंगे, सब लोग बढ़िया बढ़िया माल लेके आएंगे, अच्छा लड्डू वड्डू सब मोहन लड्डू गुलाब लड्डू सब लेके आएंगे, सुगंधित लड्डू लेके आएंगे, मक्खन मिश्री दही पेड़ा संदेश सब लेके आएंगे। और उनको आते ही बोलेंगे आओ आओ बैठो बैठो खाओ। तो ऐसे ही हुआ, वो ग्वालबाल आए डंडा लेके तोड़ने के लिए, उनको लगा अभी आज का भी रोज का हमारा गेम शुरू करना है। तो बोले गोपिया बड़े बैठे बैठो बैठो आसन लगाओ बैठ जाओ, हम लोग आपको देने वाले हैं। वो देख रहे हैं सूरज पश्चिम में नहीं तो उगा ना, आज सूरज पूर्व में उगता है, आज कहाँ से उगा है, तो आज तो पूरा डिफरेंट माहौल है। कोई बात नहीं बाद में चर्चा करेंगे बैठ जाओ सब लोग। तो उन्हें बैठ कर सब लोगों को इतना प्रेम से परोसा, इतना प्रेम से परोसा, इतना प्रेम से परोसा कि बैठ के पहले पेट भर के खाया, फिर भी आग्रह कर रहे हैं आग्रह कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ा सा लेट गए तो खाया, फिर पूरा ऐसे आधा लेट गए फिर भी खिलाया, फिर भी खिलाया, वो लेट के भी खा रहे हैं, बोला वो इतना आग्रह हो रहा है वो लेट के भी खा रहे हैं, उधर ही सो गए, इतना खिलाया इतना खिलाया इतना खिलाया सो गए, सारे ग्वाल बाल सो गए, इतना पेट भर के मिठाई विठाई खिलाया। फिर राधा रानी ने रूई लाया और कृष्ण के नाक की ओर देखा, बोले अच्छी तरह से गहराई में सो रहे। तो फिर इशारा किया ललिता को और सभी सखियों ने मिलकर कृष्ण का सारा श्रृंगार उतार दिया पूरा नखशिखांत। वो कैसे है ना वो मोरपंख होता है ना, उसको ना एक सोने की जंजीर यानी क्या कहते हैं चैन कह सकते हैं जंजीर, उससे मैया बांधती है उसको। वहाँ से लेकर शुरू किया, फिर कंठाहार कुंडल, फिर सब कुछ यहाँ का बाजूबंद कलाई बंद अंगूठियाँ कमर कांचनी सब उतार दिया पूरा कंप्लीट। पीताम्बर छोड़ दिया बाकी सब कुछ, पायल वो मैया जो है ना वो कस कस के पायल बांधती है उनको, पता है आपको तीन तीन बार कस के बांधती है, क्योंकि ये जब नृत्य करते हैं नटराज नटराज नृत्य करते हैं तो इस वन में नृत्य करते हैं तो पायल उड़कर उस वन में गिर जाती है दो दो मील तक। इज डांसिंग इन दिस फॉरेस्ट एंड द पायल्स आर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। घर पे आए तो तीन पहन के गए तो एक ही पहन के वापस आया, दो कहाँ है पता नहीं, इसलिए वो कस कस के बांधते हैं। लेकिन वो वात्सल्य भाव में बंधी हुई जो पायल है वो माधुर्य वाले खोल सकते हैं, सब खोल दिया खाली कर दिया उसको, सब उसको लेकर गायब हो गए, मुरली ले लिया सब कुछ ले लिया। बहुत घंटे के बाद में उन सब लोगों को पता है ना ऐसा भोजन करने के बाद में दो तीन घंटे तो लगते ही हैं जगने के लिए, जग जाते हैं देखते तो अरे एवरीथिंग इज गायब, भैया क्या कहेगी क्या क्या पहना के भेजा था कहाँ छोड़ के आया। लेकिन अंतर्यामी है सब जानते हैं कि ये गोपियों का खेल है, कोई बात नहीं हम लोग भी उनको अच्छा सबक सिखाएंगे। तो घर जाते हैं कृष्ण भगवान, मैया कहती है अरे क्या हुआ कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, इतना सारा अलंकार मैंने पहनाया था। मतलब मैया कुछ चिंता मत करो सारा घूस के साथ लौटा के दूंगा कल, डोंट वरी घूस घूस हाँ सॉरी सॉरी सूद सूद के साथ वो है ना सूद फैमिली बैठे यहाँ पर सूद भूल गया मैं सूद को ब्याज के साथ कल मैं लेके आऊंगा चिंता मत करना आपको। तो नेक्स्ट डे एक सुंदर लाली जो है ना वो बड़ा घूंघट ओढ़ के उनके सामने आती है गोपी, तो मैया को बड़ा प्रेम होता है, अरे क्या सुंदर लाली है कहाँ से आई वो, तो कहते हैं कि नई नई ब्याही है नंदगांव में ब्याह कर आई है, तो बड़ा प्रेम से दुलारते वो घूंघट, तो नई नई दुल्हन होती ना ऐसा यहाँ तक घूंघट होता है उनका, फिर जैसे समय बीतता है तो घूंघट ऊपर ऊपर जाता है किससे बात है तो नई नई वो शर्मा शर्मा के ऐसे कर रही है, बहुत दुलारती है प्यार करती है मैया उसको। तो अचानक वो जो घूंघट खोलती है तो कौन है वो कृष्ण भगवान सखी बने हुए तो मैया कहती आज ये क्या है ये क्या राज है, बोले बताऊंगा वो शाम तक सब राज खुल जाएगा डोंट वरी। तो पूरा घूंघट उड़ते हैं फिर सब सब अपने अकेले चले जाते हैं, क्योंकि भी वो पहन के को किसको लेके जाएंगे साथ में, अगर समझो सखा लोग जा रहे हैं तो सबको पता चलेगा कि ये तो भैंस बदल के आ रहा है, अकेले जाते हैं। और जैसे नंदगांव से निकलते हैं और बरसाने के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं ना हे गोविंद करके घिर जाते हैं, तो वो सुनते हैं कुछ लोग गोपियां भाग के आते अरे कौन है ये नई नई भाई हुई, तो उसको जगा देते हैं पानी वानी छिड़क के, कौन हो तुम, तो घूंघट में बोल रही है मैं नंदगांव से आई हूँ नई नई भी आई हूँ, मैंने सुना है यहाँ पर आपके बरसाने में कोई राधा रानी है बहुत सुंदर है बहुत अच्छी है मुझे दर्शन करने के लिए आई हूँ। और फिर वो कुछ सखियाँ साथ में पांच छह जा रही है आगे जाते हैं हे श्याम सुंदर जी जगह की गिर जाती, तो कहते कितना प्रेम है श्याम सुंदर के प्रति इतना प्रेम, वो एकदम क्या कहते हैं घायल हो जाती है उसको देखकर विवल हो जाती है इतना प्रेम। तो और सखियाँ जुड़ जाती हैं और सखियाँ जुड़ जाती है और सखियाँ जुड़ जाती है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते जाते जा रही है ना हर कुछ सीढ़ियों के साथ में हे गोविंद हे केशव हे माधव हे ऐसे अलग अलग नाम पुकार के बेहोश हो रही है। तो सब गोपियाँ ना कोई ईर्ष्या नहीं उनके मन के अंदर, आदर बढ़ रहा है कि कितनी सुंदर गोपी हमने कभी देखा नहीं नंदगांव में कहीं बाहर से ब्याह कर आई हुई है इतनी प्रेम कृष्ण से करती है, तो उनका आदर बढ़ता है जो भी कृष्ण से प्रेम करते हैं वो उनको बहुत सराहते हैं। तो फाइनली ना राधा रानी के महल के दरवाजे तक उनको सब सखियां बड़े झुंड में लेके जाते हैं और फाइनली ये एक मराठी में कहते हैं आरोली हे गोपाल हे गोविंद करके घिर जाते धाड़ करके। अभी हर बार थोड़ा सा जल छिड़क के कुछ बोल के उधर उनको जगा देते थे, इस बार उन्होंने कई प्रयास किए हर प्रकार के प्रयास किए, गोविंद का नाम बोला मकान में क्या क्या किया लेकिन वो तो बेशुद्ध पूरी तरह से। तो सब गोपियों को चिंता हुई ललिता विशाखा सब लोग तब तक इकट्ठा हो गए सब बड़ी बड़ी गोपियाँ, उन्होंने जाकर नाक को रुई लगा के भी देखा बोले तो हवा हिल रही है थोड़ी प्राण तो है लेकिन लगता है गई कुछ समय के बाद जाएगी निकल के, इतना विरह का दुख हो रहा है। तो अभी वो सब वो, कभी भी कुछ समस्या होती है ना तो मुकदमा ललिता के पास जाता है, क्योंकि ललिता उनकी नेता है, जो भी कुछ है ना वो शी इज एक्सपर्ट ट्रबल शूटर फाइंडिंग सॉल्यूशंस। जब भी कुछ समस्या होती है गोपियों के बीच में, ललिता जी इज द डिसीजन मेकर। तो कहते ललिता जी कुछ करो, तो कहती आइडिया, हमने कल ही श्याम सुंदर के सब गहने चुराए हैं। राधा रानी को अंदर जाकर कहते हैं कि आप ये सारा श्रृंगार पहनो, पीताम्बर तो नहीं चुराया था, आप पीताम्बर अपने घर से पहनो और पूरा श्रृंगार करो कृष्ण का, हाथ में धारण कराओ मुरली और तब तक हम इसको संभालते हैं। कुछ गोपियों को भेज दिया, राधा रानी को खबर कर दी, वो बाहर आके देखी तो ये बेहोश होकर पड़ी हुई है, इतनी सुंदर गोपी घूंघट ओढ़ के है, इतना भाव, वो भाव सब जगह प्रकाशित हो रहा है, राधा रानी भी विवल हो जाती है। तो कहते हैं कि सखी मर जाएगी ये, इसको बचाना होगा, इतना प्रेम करने वाली गोपी है, हमारी हमारी सहेली है वो, तो क्या सुझाव क्या है, आप कृष्ण का श्रृंगार करो। तुरंत कुछ गोपियां अंदर जाती है और राधा रानी को फटाफट श्रृंगार करती है, सारा श्रृंगार नखशिकांत पायल से लेकर ऊपर तक पहना देती है और फिर वो आके दरवाजे पे उसको खड़ा कर देते हैं, ऐसे त्रिभंग अवस्था में खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाती है। तो कहते सखी देखो श्याम सुंदर आए हैं, वो ना ऐसे ना जो आप जब पानी में कोई बलून दुबाते हैं ना बहुत देर तक ऐसा दबा कर रखते हैं और छोड़ देते हैं, कैसा जूम करके उड़ता है ना वो, है ना, उसमें हवा है गैस है, आप उसको दबा के रखा है बहुत नीचे गहराई तक, जब छोड़ देते तो कैसा वो उछल के ऊपर आता है, वैसे उछल के कूदती है गोपी, पूरा घुंघरू घुंघट उठ फेंक देती है। देखो ना पकड़ा ना आपको, बहुत चालाकी करते हो, हाँ। क्या समझते हो आप कृष्ण के साथ चालाकी कर रहे हो, देखो पूरे जो चुराए थे सब दिख रहे हैं, उतारो उसको सब, हाँ रंगे हाथ पकड़ लिया पूरा, एक भी गहना छोड़ा नहीं है, सब पहना दिया है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारा रेडीमेड अवेलेबल है, उतारो इसको। तब तक है ना उनके सखा भी सब जमा हो गए उधर राइट टाइम पे, और वो बोल रहे ए, ले लो। तो वो सखियां बहुत नजर झुका के, बहुत संकोच करके, बहुत एम्बेरेसमेंट, इतना इतना उनको दुख हो रहा है कि हम पकड़े गए ऐसा, इतना चालाकी करके, इतना कितने घंटे से रो रहे हैं पुकार पुकार के गिर रहे, हम इतनी भोली वाली फंस गई बेचारी इसके अंदर, हाँ पूरा सामान अंदर तिजोरी से छुपा कर रखा था, वो बाहर निकल निकलवा के शरीर में धारण करवा के प्रकट करवाया, देखो कितना चालाक है ये, लेकिन क्या बोलेंगे ऐसा एट से खड़ा है, उतारो देखे करके उतार रहे हैं, सखा इकट्ठा कर रहे हैं और सखा की एक मंडली जो है उनको पहना रहे हैं, जैसे उतारा जा रहा है उसी क्रम से इनको पहनाया जा रहा है, तो खड़े हैं अच्छी तरह से पहनाते हैं, आखिर में सोने की श्रृंखला मोर पंख पहनाते हैं, ए मुरली लाओ, मुरली लेते हैं खड़ा रहते, आगे गुस्सा की मत करना, ये लीला भी मानु महल में हुई है ना, तो भानु महल का ऐसा सुंदर वर्णन है कि वहां पर कृष्ण ना कई बार सखी बनकर गए हैं, वो उनका पेटेंट है वो श्यामा सखी, कभी चूड़ी बेचने को जाती है, कभी मेहंदी लगाने वाले बन के जाती है, हाँ कभी ब्रह्मचारी बन के जाती है, वो ब्रह्मचारी बन के व्याघ्रम्बर ओढ़ के गए थे उधर, व्याघ्रम्बर क्या होता है शेर की चमड़ी, शेर की त्वचा, उसको व्याघ्रम्बर कहते हैं, एक होता है मृगाजिन जो हिरण का होता है वो ध्यान के लिए अच्छा होता है, तो व्याघ्रम्बर उड़े हुए ब्रह्मचारी पहुंचते हैं वहां पर और बिल्कुल वो महल के सामने बैठ के ऐसे ध्यान में बैठे, तो सखियां कहते अरे कोई बड़ा बाबा आया है ब्रह्मचारी बाबा, तो उसके बाद जाते दर्शन करने के लिए, बोले बाबा हम पर कृपा करो, तो बोले क्या प्रश्न है आपका, कहते बताओ हमारा विवाह हमारे प्रियतम से होगा क्या, किससे होगा बताओ, तो वो ध्यान में बैठते जैसे लगा दिखा रहे कि मैं त्रिकालदर्शी हूं और मैं दर्शन कर रहा हूं कि आपका पति कौन है, तो सबके पति के रूप में एक ही व्यक्ति दिख रहा है उनको मन में तो वो कह रहे हैं कि बताऊं क्या, तो गोपियां अभी संकोच में आ जाती है, अरे वो तो साक्षात अगर त्रिकालदर्शी है तो इस सबके सामने नाम बोलेगा तो अच्छा नहीं है, संकोच हो जाता है, नहीं 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 बस पता, बहुत लंबी लीला है। तो उसके बाद में वो बोलते हैं कि देखो आपको अगर अपने प्रियतम के साथ विवाह होना है, जिसका मैं नाम, आपको संकोच है मुझे भी संकोच है बताने में, आपको बहुत सारा दान देना पड़ेगा मुझे, बहुत सारी लंबी लिस्ट है वो। और फिर कहता है फिर वो ना गोपियां थोड़ा सा क्या कहते हैं ना हमारी भाषा में पक जाती है, मतलब वो ऐसा वो बातें बनाते रहते हैं ना, तो उनको लगता है कि देखो महाराज जी आप बहुत ज़्यादा खींच रहे हो, अगर आप सच्चे त्रिकालदर्शी हो, अगर आप में सच में आपने अगर हमारे होने वाले पति का जो हम चाहते हैं उसका दर्शन किया होगा मन में, तो आप अभी आप ध्यान लगाओ और आपके ध्यान से हमारे प्रियतम यहाँ प्रकट होने चाहिए। अभी आ गई समस्या, प्रियतम तो वही है, प्रकट कैसे करे? तो हमारे प्रियतम भी बहुत होशियार है, वो कहते हैं एक शर्त है, आप सब लोग आंख बंद कर ध्यान लगाओ, बिल्कुल आंख नहीं खोलना है आपको और बिल्कुल अंदर जाना है आपको, बाहर कुछ सोचना ही नहीं आपको। तो वो जैसे ही ध्यान में बैठ जाती है ये तुरंत भाग जाते हैं, सारा भेष उतार देते हैं और मुरली लेके खड़े होते हैं और बोलते हैं अभी आप आंखें खोलो, उसके सामने प्रियतम खड़े होते हैं। तो बोलते अरे वो बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए, वो बड़े बाबा इतने सिद्ध बाबा थे, हमने उनको पूछा था, उनकी कृपा से आपका दर्शन हुआ। बोले मैंने तो बाबा को नहीं देखा, मैं तो यहीं पर आपको मिलने आ रहा था, आ गया मिलने के लिए। ये भी लीला भानुमहल में हुई थी, हाँ ऐसे अनंत लीलाएं हैं मेहंदी वाली। देखो आप वो चित्रपट भी देखते ना, वो इस्कॉन में बहुत सारे चित्रपट हैं, वो श्याम वर्ण की सखी है, वो गुलाबी वस्त्र पहनी हुई है और वो राधा रानी का हाथ मिलाकर उसमें मेहंदी रचा रही है, और उस समय ना वो भी कांप रहे हैं और राधा रानी भी कांप रही है, क्योंकि है तो कृष्ण ही ना। जब प्रियतम को मिलते हैं तो उनके सानिध्य से इतना चैतन्य, इतना आनंद की अनुभूति होती है, वो तो हो ही रहे उनको, वो वेश बदल के आए लेकिन वो है तो कृष्ण ना, तो वो दिव्य आनंद का उनको भी अचंबा हो रहा है कि जो आनंद मुझे कृष्ण को मिलने पे हो रहा है ये मेहंदी वाले को मिलने से क्यों हो रहा है। तो कभी फूल बेचने वाले बन के आते हैं, कभी ढाड़ीन, कभी मालिन, हाँ कभी मेहंदी वाली, कभी ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी की बहुत लीलाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं, बहुत बहकाते हैं गोपियों को आकर। एक गोप देवी की लीला है जो भी उधर भानु महल में हुई थी, उस समय वो भानु महल के अंदर का वर्णन आया है। कहते हैं कि भानु महल के अंदर जो है ना वो भूमि पर इतने सारे सुंदर सुंदर वेलियां और फूल ऐसे मुलायम मुलायम, पूरा जो भानु महल का जो भूमि है ना अंदर जो जो फ्लोर है ना वो सब ऐसे सुंदर सुगंधित फूलों से बना हुआ है, जिसमें अगर आप राधा रानी पैर रखती है ना तो वो भी 6 इंच अंदर जाता है पैर उनका, इतनी मुलायमता है उसके भूमि में और सुगंध, अपरिमित सुगंध है उसके अंदर। और जब गोप देवी यानी श्री कृष्ण जो है, अभी उसकी बहुत लंबी कहानी है, वो है कि राधा रानी ने पूछा कि क्या करना चाहिए कृष्ण को वश में करने के लिए, तो एक गोपी है शत चंद्रानना नाम की गोपी है, वो बहुत विद्वान है, उसको सलाह पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि तुलसी देवी वृंदा देवी का पूजन करो आप। तो वो एक लंबा 6 महीने का व्रत है तुलसी का, वो कार्तिक में समाप्त होता है, उसका उद्यापन होता है, वो 6 महीने का तुलसी व्रत राधा रानी ने किया है। उसके फल स्वरूप वो जब वृंदा देवी स्वयं प्रकट हो जाती है सिंहासन में, सोने के सिंहासन में आकाश से प्रकट होती है, तो वृंदा देवी की बहुत सेवा करती है राधा रानी, और फिर कहती है कि आप, वृंदा देवी कहती है कि आपने मेरे लिए इतना व्रत किया, आप क्या चाहते हो? तो वो कहते हैं आप तो जानते हो मैं क्या चाहती हूँ। तो मैं कहती मैं जानती हूँ आप क्या चाहते हो, आपको आपके इष्ट जो है बहुत जल्द प्राप्त हो जाएंगे। तो कृष्ण को पता था कि राधा रानी ने मेरे लिए तो वृंदा देवी का व्रत किया है, तो कृष्ण उनकी एक बार आखिरी परीक्षा करना चाहते थे, तो वो गोप देवी का रूप धारण करके वहाँ पहुँचे, और गोप देवी का रूप धारण करने के जब गए तो गोप देवी क्या देख रही है वृषभानु महल में, उसका वर्णन गर्ग संहिता में आता है। इतना सुंदर मिस्टी एटमोस्फियर है, बहुत सुगंधित सब वातावरण है, राधा रानी उसमें चल रही है, विहार कर रही है, ऐसे वन में ही विहार कर रही है, ऐसे महल का स्थिति है। तो अंदर जाती है तो उसको देखकर राधा रानी कांपने लगती है, गोप देवी को देखकर, ना सौंदर्य, नी आभा, ना प्रेम, तो वो ना उसको छोड़ ही सकती नहीं, इतना आलिंगन देती है उसको। आलिंगन देने के बाद में बड़ा दिव्य अनुभव होता है, तो आलिंगन छोड़ ही नहीं रही है। तो गोप देवी कहते हैं अभी जाने का समय हो गया है, और गोप देवी वही यही कहती है कि मैं नई नई ब्याही हुई दुल्हन हूँ नंदगांव की, नंदगांव से आ रही हूँ। तो वो छोड़ने के लिए दिल नहीं हो रहा है, तो कहता है मैं कल दोबारा आऊँगी, अभी मुझे जाने दो। तो बड़ी बड़ी कठिन भाव से उसको छोड़ देती है, और रात भर उसके चिंतन में जगती रहती है। शी स्टेज अवेक होल नाइट रिमेंबरिंग दैट ब्यूटिफुल गोप देवी, उसका चेहरा, उसका मधुर वाणी, उसके कर कमल, उसकी उंगलियां, उसका प्रकाश, आभा, तेज, प्रेम, सबसे प्रभावित होकर रात को नींद नहीं आ रही है और प्रतीक्षा कर रही है कब आएगी गोप देवी। तो फिर वो आते हुए दिखाई पड़ती है, तो जब नीचे दिखाई पड़ती है पहाड़ से नीचे चढ़ रही है तो वो उधर कंपन होने लगता है। फिर गोप देवी आके बोलती है, आते ही बोलती है, तुम उस श्याम सुंदर प्रेम करती हो क्या? तो वो शर्मा जाती है, बोले आप बहुत गलत काम कर रही हो, वो बहुत बुरे चरित्र का है, कोई संस्कार नहीं है, कोई शिष्टाचार नहीं है, मैं जब आ रही थी तो मुझे रस्ते में छेड़ दिया, ये कोई तरीका है? मैं नई नई ब्याही दुल्हन हूँ नंदगांव की, मेरे भी कुछ तरीके हैं, तौर तरीके हैं, कुछ शिष्टाचार है, ये बीच में आकर मेरा पल्लू खींच लिया, मेरा घूंघट उठा लिया, मेरा हाथ पकड़ लिया, बिल्कुल आपके योग्य नहीं, आप उसके प्रेम नहीं करना, ऐसे एक बहुत लंबा वर्णन है वो क्या 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 बोलती है, और वो जो 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 बोलती है वो सबका उसके बाद में ध्यान से सुनती है राजा रानी, और एकदम गंभीर हो जाती है, ध्यान से सुनकर हर एक वाक्य का खंडन करती है राजा रानी कि किस तरह से आपने जो जो वाक्य किया बोला है वो सब झूठ है, आप बोलते कोई भक्त नहीं है, कोई वैदिक धर्म का पालन नहीं करते हैं, अरे गौओं का नाम लेते, दिन रात गौओं का जप करते रहते हैं, हाथ से गिनती करते रहते हैं और गौओं को चालन करते रहते हैं, और जो गौओं का भजन करता है उससे बड़ा कोई भक्त नहीं है, दिन रात गौओं के रज में अपना स्नान करते रहते हैं, इससे बड़ा पवित्र कोई नहीं हो सकता है, ऐसे करके बहुत सारा वर्णन करते हैं। तो वो ना गोप देवी जो कृष्ण बने हुए हैं वो राधा रानी का ये प्रेम का आवेश देकर भाव विवल हो जाते हैं, और उनको पता चलता है एक समय पर कि ना मैं अभी मेरा गोप देवी स्वरूप जो है ना, गोप देवी स्वरूप जो है ना वो मेंटेन करना मेरे लिए मुश्किल हो गया, वो तो एकदम कांपने लगते हैं, वो इतना प्रेम प्रकट हो रहा है, जैसे कि जो परीक्षा वो कर रहे हैं उसमें राधा रानी बहुत बढ़िया अंक से पास हो रही है और परीक्षक भी भाव विवल हो रहा है। तो उतने में गोप देवी कहती है, अभी गोप देवी को अपना रूप है ना वो बनाए रखना बहुत कठिन हो गया है, वो भी समझ रही है कि मेरा भांडा फूटने वाला है, तो वो कहती है अगर तुम्हें कृष्ण पर, श्याम सुंदर पर, गोपाल पर इतना प्रेम है तो अभी आंख बंद करो और ध्यान करो उसका, अगर आपके ध्यान में उसके प्रेम में इतनी शक्ति है और उस ध्यान के शक्ति से अगर वो यहां प्रकट हो जाए तो मैं मान लो कि आपका प्रेम इतना सच और श्रेष्ठ है। तो उसको समय चाहिए ड्रेस चेंज करने के लिए। तो राधा रानी इतनी भोली भाली अचानक गंभीर होकर ध्यान लगाती है और ध्यान में भी विवल हो जाती है, कृष्ण के ध्यान में तुरंत जाकर गोप देवी का वस्त्र उतार के फेंक देते हैं और मुरली लेकर आ जाते हैं और पुकारते हैं राधे हे वृषभानु नंदिनी, तो आंख खोलती है तो सामने कृष्ण खड़े हैं, भाव विवल होकर आलिंगन देती है और कृष्ण कहते हैं कौन आया था अभी तुम्हारे पास? तो कहते हैं गोप देवी आई थी, बहुत सारी बारे आपके बारे में कह रही थी, बोले कभी वो उल्टा के साथ दुष्ट के साथ बात नहीं करना, कभी बात नहीं करना, बहुत दुष्ट है वो, बहुत कपटी कपटी स्त्री है वो, हमारे यहाँ नई नई ब्याही हुई है, कभी भी आगे उससे न मत मिलना। ऐसे ऐसे सुंदर लीलाएं वहां पर होती हैं। कभी आप मुझे बताइए कंस का वहां पर प्रवेश नहीं हुआ कभी, राधा रानी की इतनी शक्ति है कि कंस उसको ढूंढते ढूंढते कृष्ण को मारने के लिए आया था, बरसाना के रास्ते से नंदगांव जाना पड़ता है आज भी, तो बरसाना क्षेत्र में प्रवेश करते ही कन्या बन गए, स्त्री बन गया, कभी भी उसके आगे आया नहीं, वो भी एक लंबी कहानी है। फिर भी कहना चाहता हूं कि कंस भी आकर स्त्री बन गया, उसके पश्चात कंस को धमकाया गया राधा रानी के द्वारा, दोबारा तुम या तुम्हारा कोई आदमी यहां पर आना नहीं चाहिए, तो कंस ने वादा किया कि मैं और मेरा कोई राक्षस यहां पर नहीं आएगा, क्यों ऐसी चटपटी लीला हो रही है उसमें राक्षस आ सकता है क्या? कैन इट बी इंटरप्टेड बाय वन डिमन, हा 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 करके फिर वो गए, वो लीला को छोड़कर जाएंगे, उसको गला दबाएंगे, मुंह में हाथ डालेंगे, कुछ भी करेंगे, उसको मारेंगे, फिर जमुना स्नान करेंगे, कितना बड़ा व्यत्यय है लीला में, नहीं हो सकता है। सारे ब्रज में लीलाएं होती है और एक टाइप की होती है, वहां पर सब जो है राक्षस भी आ सकते हैं, बीच में कोई भोजन कर रहे हैं, गोचारण कर रहे हैं, अचानक धेनुका आ गया, अचानक वो आ गया, अचानक केशी आ गया, हो सकता है, लेकिन बरसाने में, नंदगांव में, जावट में नहीं हो सकता है। वहां की जो लीलाओं का स्टैंडर्ड है, जो उत्कटता है, जो गहराई है, जो दिव्यता है, वो किसी भी कीमत पर खंडित नहीं हो सकती। इसलिए पूरे ब्रज के इतिहास में बरसाना, नंदगांव, जावट, कोकिलावन, ये क्षेत्र में कभी भी राक्षस नहीं आए। वहां पर नंदगांव में शाप था शांडिल्य मुनि का, जो भी आएगा राक्षस पत्थर बन जाएगा, तो पत्थर आए कंस के सेनापति तो वो पत्थर बन गए, हाउ बिलाऊ, पता है ना आपको, चार मूर्तियां बड़ी पत्थर की बनी, तो दोनों तरफ से। तो बताओ कंस कृष्ण से अधिक भयभीत था कि राधा रानी से? इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ यह है कि भयभीत तो था वो, उसके हाथ से मृत्यु होने वाली है, लेकिन राक्षस भेजने का साहस करता था वो हमेशा। अगर डरता था तो वो चुपचाप बैठेगा ना, भाई मेरे पास आके मुझे मारना नहीं चाहिए, भाई मैं कुछ नहीं करूँ, शांत बैठूंगा। लेकिन जगह जगह पर, कर्ण कर्ण पे उसने हर दिन राक्षस भेजे, लेकिन राधा रानी के धाम में दोबारा आने की हिम्मत नहीं की उसने, कुछ नहीं किया उसके बाद में। बस एक बार राधा रानी ने उच्छाप दे दिया, इस कुंड में कूदो फिर पुरुष शरीर प्राप्त होगा। उधर कूदा बेचारा, उसका घोड़ा भी घोड़ी बन गया था, वो घोड़ी को बैठ गई, कूदा उसके अंदर घोड़ी भी घोड़ा बन गया, वो भी पुरुष बन गया। जो भागा पीछे मुड़कर देखा नहीं कभी उसने, क्यों पीछे मुड़कर आया भी नहीं कभी। तो वास्तविक राधा रानी का आधा भय था उसका, कोई प्रयत्न नहीं किया आगे वहां पर प्रवेश करने का। तो ये बरसाना क्षेत्र है वृंदावन धाम के, जैसे कि दूध एक होता है और एक मक्खन होता है, एक दूध का स्वाद है और एक मक्खन संपृक्त स्वाद है, वैसे वृंदावन जो है दूध की तरह है, बहुत दिव्य, और बरसाना जो है वो मक्खन की तरह है, उसका संपृक्त स्वाद जो अतुलनीय है, इनकम्पेरेबल है। समय बहुत हो गया है, संक्षेप में थोड़ा सा उल्लेख करते हैं। दानगढ़ में ये चार हेड है ब्रह्मा जी के, भानुगढ़ में अनंत लीलाएं हैं, वैसे दानगढ़ में दान की लीलाएं हैं। वहां पर ना याचक बनकर श्री कृष्ण राधा रानी से याचना करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, प्रेम की रति की भिक्षा मांगते हैं, और बहुत सारी दान लीलाएं वहां पर हुई हैं। विलासगढ़ में विलास करते हैं, झूला झूलते हैं, रास खेलते हैं, बहुत सारी लीलाएं वहां पर है। विकली महाराज ने लीला सुनाई कि वहां पर भगवान ने एक बार उनको प्रवेश नहीं दिया लीला में, वो सब मट्टी मट्टी में रेत रेत में खेल रहे थे, तो उनको बोला हमको भी आना है, यहाँ पर आपको प्रवेश नहीं है। तो भगवान ने वहां पर श्याम सुंदर जी ने रेत का स्टॉर्म बना दिया पूरा, वो तो होता ना सऊदी अरब में होता ना रेगिस्तान में, सैंड स्टॉर्म बना दिया। उस सैंड स्टॉर्म में सब अदृश्य हो गए, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। उस सारे भ्रम के अदृश्यता में राधा रानी को जाकर श्याम सुंदर ने आलिंगन दिया, राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गई, और कुछ देर बाद में वो सैंड स्टॉर्म अदृश्य हो गया और श्याम सुंदर भी अदृश्य हो गए, और सब लोग इतने परेशान थे ना कि उनका वो लीला चल रहा था वो भंग हो गया, ललिता परेशान, विशाखा परेशान। तो राधा रानी के पास भाग भाग के आई, देखा तो वो भी फिर परेशान होनी चाहिए, लेकिन राधा रानी बहुत प्रसन्न और आनंदित थी, तो सब समझ गए क्यों श्याम सुंदर नहीं दिख रहे, फिर भी समझ गए। और आखिरी जो है ना, अभी इसमें भी ऐसा प्रगतिशील लीला है, गुह्यतम, हाँ गुह्यतर और गुह्यतम, गुह्यतर और गुह्यतम, आगे सबसे मान मंदिर है वहां पर। ऐसी विचित्र लीला है कि वहां पर राधा रानी रूठ जाती है और रूठ कर बैठती है, फिर कृष्ण उसको बनाते हैं। जयदेव गोस्वामी का जो वर्णन है ना, वो मान मंदिर लीला का वर्णन है। तो मान मंदिर में तो अनंत बार राधा रानी विविध कारण से रूठ के बैठती है, और अनंत समय विविध प्रकार से कृष्ण उनको बनाते हैं, और एक समय उन्होंने मोर बनकर नृत्य किया और राधा रानी को रिझाया, वो है मोरकुटी, वो भी एक माउंटेन पीक है बीच में। और हमारा जो हॉस्पिटल बन रहा है ना, भक्ति वेदांता आय हॉस्पिटल बरसाना, अभी निर्माणाधीन है, थोड़ा सा उसमें शॉर्टेज है, इसलिए हम लोग थोड़ा तड़प रहे हैं, लेकिन वो भूमि ऐसी हमारी है, चिक्सोली गांव में ही है वो, चित्रा सखी का गांव है जहाँ पर मान मंदिर है चित्रा सखी, उसमें गहवर बन भी है। अभी क्या कहें, अभी टाइम तो खत्म हो गया। एनीवे, तो हमारा चिक्सोली में जो भूमि है वो भूमि में 5 एकड़ की भूमि है, अराउंड 120,000 स्क्वायर फीट। हर कण में आप खड़े रहेंगे, किसी भी जगह पर खड़े रहेंगे, किसी आपको जो पसंद है वो कोने में 5 एकड़ के, ये कोने में, शुरुआत में, एंड में, रोड के पास, किधर भी खड़े रहो, आपको पांचों पहाड़ों का दर्शन होता है एक साथ। भानुगढ़, दानगढ़, विलासगढ़, मोरकुटी, मान मंदिर, एवरीथिंग कैन बी सीन, किधर से भी खड़े रहो आप। इतना सुंदर हमारी पवित्र स्थली है, जो हमारे वो होते हैं ना वास्तु विशारद, वो गए थे वहाँ पर, तो उनका कुछ मशीन होता है, ऐसे आपको ऐसे पकड़ते रहो ट्यूँ, ऐसे ऐसे अपने आप ही वो डिवाइन एनर्जी दिखाता है, पॉजिटिव एनर्जी। तो वो उनका जो था ना वो औजार, वो हर समय ऐसे ही था, इट कुड नॉट मूव टुगेदर ओनली, वो कितना कोशिश करते हो भी वो इतनी वाइब्रेशन तेज है कि वो ऐसे ही खड़ा है। वो उन्होंने कहा कि आपके भूमि में इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है आप, मैं वर्णन नहीं कर सकता, उन्होंने बताया। और एक पेड़ के पास गए तो उधर बहुत ज़्यादा, वो कहता इस पेड़ पर बहुत सारे महान संत जो है सूक्ष्म रूप में भजन कर रहे हैं राधा रानी का, इसको पहले आप चबूतरा बनाओ, सबसे पहले चबूतरा उसका बनाया, उसके ऊपर कथा करने के लिए जगह बनाया, बहुत बैठने के लिए जगह बनाया, और रोज इसके पूजन करो। तो हम हफ्ते में एक बार वहाँ पर कीर्तन करते हैं राधा रानी को, क्योंकि सामने राधा रानी है, ऐसे पेड़ के सामने राधा रानी का मंदिर है, वहाँ पूजन करते हैं, दीपक जलाते हैं और वो पेड़ को बहुत संभाल के रखा है हमने। ऐसे चार पेड़ हमारी भूमि में है। वो कहते हैं कि कम से कम 7-8 साल पुराना पेड़ है वो। इतना विशाल पेड़ आपको पूरे ब्रज में मैंने कभी देखा नहीं, इतना विशाल विस्तार है उसका। तो हर तरफ से, हर 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 कोने से हमारी जो भूमि है बहुत पवित्र और बहुत दिव्य भूमि है वो। उसमें अभी हम आंखों का अस्पताल बना रहे हैं। तो ये बताने का कारण क्या है कि ब्रज में केवल जाना नहीं चाहिए, ब्रज जाकर सेवा भी करनी चाहिए। ब्रज भूमि की, ब्रजवासियों की ब्रज भाव से सेवा करनी चाहिए, तब जाकर राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। मंदिर में जाना ही चाहिए, मत्था टेकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन वास्तविक संपर्क जो है वो सेवा के माध्यम से ही होता है। हमारा पूरा भक्ति का जीवन जो है वो सेवा भाव का साई भाव है। उसका फाउंडेशनल एलिमेंट इज सेवा भाव। विदाउट सर्विस देयर इज नथिंग कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आइए, मैं राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग बरसाने में आए और बरसाने में धाम सेवा, ब्रजवासी सेवा में आप जुड़ जाएं। एक बार नहीं, चिरंतन समय के लिए, शाश्वत समय के लिए, इस जीवन काल के समय के लिए सेवा में जुड़ जाए। राधा रानी की स्मृति आपकी हमेशा बनी रहे। दिन रात आप राधा रानी को प्रार्थना करने में लगे रहे। राधे किशोरी दया करो, बोलो
राधे किशोरी दया करो,
राधे किशोरी दया करो,
राधे किशोरी दया करो।
हृदय से पुकारो, हाँ, हृदय के कशिश से पुकारो, भाव से पुकारो, असहाय होकर पुकारो। वो कृपा करेंगी, गुरु जी के माध्यम से कृपा करेंगी नहीं, कृपा बरसाएगी। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा।